أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. آج ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے گفتگو کے لیے جس کی اہمیت لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. خدا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ظہور ہو چکا ہے, کثرت ظہور کی وجہ سے خدا مخفی ہو گیا. اللہ عارفانہ کہ پروردگار عالم کثرت ظہور کی وجہ سے مخفی ہے, یعنی ہر چیز میں اس کے اتنے زیادہ اثرات پائے جاتے ہیں, اس وجہ سے بھی آپ بعض اوقات کسی چیز کا بہت زیادہ سامنے ہونا بے توجہی کا سبب بن جاتا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نمازیں ادا ہونے کے باوجود لوگ فحش اور برے کاموں سے رک نہیں پا رہے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی نہ کوئی ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہے ان نمازوں میں کہ جس کی بنا پر نمازیں اپنے وہ اثرات نہیں دکھا پا رہی کہ جو انہیں دکھانے چاہیے. ہم نے ان نمازوں کو ناقص کر دیا ہے. اصل میں شیعت کا ایک نظریہ ہے اور جو اور مکاتب فکر ہیں ان کا بھی ہے, وہ ہے تجسم اعمال کا. ہر جو ہمارا عمل ہے اس یہ ایک جسم رکھتا ہے, اور یہ اس کی جسم آپ آنکھ بند ہوتے ہی اس کا مشاہدہ کریں گے. کتنی روایت ملتی نہیں ہے کہ جب مومن قبر کے اندر پہنچتا ہے تو نماز ایک انتہائی حسین نوجوان کی شکل میں سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی, زکوٰۃ کھڑی ہو جائے گی, صبر ایک کونے کونے پر موجود ہوگا تاکہ مومن کو عذابوں سے بچایا جائے. تجسم اعمال. اب ہم جو جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اس نماز کی شکل اتنی بھیانک بنتی ہے کہ وہ کوئی مدد نہیں کر سکے گی, اور جو خطرات اس نماز کی وجہ سے, جو ناقص نماز جو ہم بغیر معرفت کے جو پڑھ رہے ہیں, اس کو حاصل کرنے کے طریقے بھی ابھی آگے چل کر آنے والے ہیں گفتگو میں, جب اس کا مشاہدہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پر اس نماز کا کوئی فائدہ ہمیں محسوس نہیں ہوگا. یہ لولی لنگڑی اندھی بہری نماز جو مراجع کرام نے جو اس کا نام رکھا. علماء نے کہا کہ دیکھیے یہ جو نام, اچھا دو اس میں ایسی باتیں, ایک تو یہ کہ لوگ اس کو اہمیت دینے کو تیار نہیں پڑھنے کے باوجود. امام کی حدیث ہے کہ پروردگار عالم اس عمل کو کیسے قبول کر سکتا ہے کہ جس کو اس کا کرنے والا خود حقیر سمجھتا ہو. آپ اس امید میں ہیں کہ یہ نماز قبول ہوگی, لیکن آپ تو خود جس انداز سے آپ نماز پڑھ, مثلا فجر کی نماز کو آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ اٹھتے ہیں, جمائیاں لیتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں, کس طریقے سے بس جلد سے جلد یہ نماز ختم ہو اور اب دوبارہ بستر پہ جا کے گر جائیں, کوئی نماز ہے؟ ابھی آگے چل کر تو ہم اس گفتگو جو آج ہماری ہوگی اس میں واضح کریں گے کہ اصل میں نماز ہے کیا, اس کے ملکوتی اور نورانی پہلو کیا ہیں, اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے. اچھا دیکھیے نماز میں بھی دو چیزیں, ایک تو یہ کہ نماز میں صحت پائی جائے, شرائط صحت جو کہ فقہی مسائل میں جس سے ڈسکس کیا جاتا ہے. ہمارا آج فقہی مسائل کا ڈسکس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیونکہ یہ بالکل موضوع ہی الگ ہے. سب سے پہلی تو چیز ہے کہ شرائط صحت ساری پوری ہو جائیں, لوگ پہلی منزل پر ہی اٹک کے رہ گئے. جب یہ پوری شرائط صحت آ جائیں گے, نماز فقہی اعتبار سے ٹھیک ہو جائے گی, تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ منافی کمال تو کوئی چیز اس میں نہیں آ رہی. کمال کی منزلوں تک بھی تو نماز کو لے جانا ہے نا, تو پتہ چلا شرائط صحت تو پائی جاتی ہیں لیکن منافی کمال چیزیں بھی آ گئیں, تو نماز پھر وائز رد قبولت قبولت ماں سے واہا وائز ردا ماں سے واہا, کہ یہ نماز اگر قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہوں گے, اور یہ اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. کتنی واضح متفق علیہ حدیث ہے. علماء نے کہا کہ دیکھیے سب سے پہلے تو نماز کا ایک نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے. علماء نے ایک مثال لکھی ہے کہ صرف ایک سگریٹ پینے والا اگر ایک کمرے میں موجود ہے تو 10 افراد تک اس دھوئیں کو پہنچا دیتا ہے, اور نماز پڑھنے والا اگر کسی مجمع میں, اس کا کوئی اثر دوسروں کے اوپر نہیں پڑتا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں جس کو ابھی آپ گفتگو کے اندر سنیں گے اور اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد نمازوں میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے جیسا کہ آئمہ اور علماء کرام نے اپنے ارشادات میں واضح کی. اچھا جو پوائنٹس آپ ان علماء نے یا آئمہ سے مروی جو ہیں وہ ایک جگہ میں میرے پاس لکھے ہوئے ہیں, میں آپ کے سامنے پڑھتا جاتا ہوں اور اس کی کچھ نہ کچھ تشریح کرتا جاتا ہوں. اچھا پہلے تو لوگ زیادہ تر افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے توضیع المسائل کے مطابق اگر نماز پڑھ لی تو بس اب تو اس کو 100% قبول ہونا چاہیے. हमें इतना इल्म है, हम इतने छोटे मसाइल से आगा हैं। एक जुमला है अगर चाहे उलमा के दरमियान थोड़ा सा मुतनाज़ा रहा है, वो है अगरचे हदीस में तो उसका वाज़े तौर पर तस्करा नहीं आया उस जुमले का, लेकिन इरशादात उलमा के अंदर मौजूद है। अल इल्मु हिजाबुल अकबर, इल्म सबसे बड़ा हिजाब है। कहा जाता है कि परवरदिगार आलम का जो रास्ता है ना उस तक पहुंचने का, उसमें 70,000 जुल्मानी हिजाब हैं और 70,000 नूरानी हिजाब हैं, पर्दे हैं बीच में, उन पर्दों को चाक करते करते तकर्रुब खुदा को हासिल किया जाता है। तो अल इल्मो, अच्छा ये खुद इमाम खुमैनी इस जुमले के बहुत ज्यादा कायल है। अगर जैसे शहीद दस्तेरब शिराजी ने इस जुमले पर काफी एतराज़ किया है और कहा कि इस जुमले को ईजाद करने वालों ने इल्म की कोई खिदमत नहीं की, लेकिन इमाम खुमैनी ने आगे चलकर लिखा भी है कि अल इल्मो हिजाबुल अकबर, इल्म खुद बहुत बड़ा हिजाब बन जाता है बाज़ औक़ात। इंसान में पैदा हो जाती है ना ये बात कि मुझे तो इतनी मालूम हो गई है, मेरा तो इल्म इतना ज़्यादा बढ़ गया, अब ये खुद बजाय कि तकर्रुब खुदा का बायस बनता है, ये रुकावट डाल देता है, मजीद पर्दे खड़े कर देता है। इमाम खुमैनी ने कहा इल्म हिजाब अकबर है, लेकिन इस हिजाब के अंदर दाखिल होकर इसको चाक किया जाएगा। यानी ये नहीं कहा, अच्छा लोग कहेंगे इल्म हिजाब अकबर है तो इल्म तो हासिल ही नहीं करना चाहिए, कहा कि नहीं ऐसा हिजाब है कि जिसमें दाखिल होकर चाक करना पड़ेगा। हम्माद इब्ने ईसा इमाम के एक सहाबी, हम्माद इब्ने ईसा के मुतालिक कहा जाता है एक दफ़ा नमाज पढ़ रहे थे कि इमाम ने उनकी नमाज को देखा। अच्छा वो वाक़ा नहीं है जो आप अक्सर सुनते रहते हैं कि उनकी नमाज में वैसे कोई गलती थी। हम्माद इब्ने ईसा नमाज पढ़ रहे थे, जब नमाज ख़त्म हो गई तो इमाम ने हम्माद को बुला कर कहा कि आए हम्माद, अफसोस की बात है कि इंसान 50 साल तक नमाजें पढ़ता रहे और 2 रकत नमाज ठीक से ना पढ़ सके। अच्छा हदीस के अंदर तो सिर्फ ये इसका मतलब ये है कि हम्माद की शायद फिक्ही मसले की कोई ऐसी खिलाफ वर्जी पाई जा रही थी नमाज के अंदर कि जिससे हम्माद की शायद नमाज गलत होती थी। हम्माद के मुतालिक सुनिए, कहा जाता है कि हम्माद को इमाम ने 2 दुआएं दी थी। एक तो दुआ ये थी कि परवरदिगार आलम तुम्हें 50 हज नसीब करें। हम्माद को अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 50 हज की दुआ इमाम के नतीजे में, और इमाम ने हम्माद को दुआ दी थी कि परवरदिगार आलम तुम्हारे रिस्क में और उम्र में वसत करें, तो दोनों चीज़ें उनको मिली। हम्माद के मुतालिक ये बात बहुत मशहूर है कि फ़िक़ा की एक किताब किताब हरीज उनको ज़बानी आती, इसका मतलब है कि हम्माद की वो नमाज शरायत फ़िक़ के तहत तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसमें वो रूहानी और नूरानी कमालात नहीं पाए जा रहे थे कि इमाम ने कहा अफसोस की बात है इंसान इतने अरसे तक नमाज पढ़ता रहा 2 रकत नमाज ठीक से ना पढ़ सके। इसका मतलब ये है कि कुछ मुनाफी कमाल चीज़ें हम्माद की नमाज में ऐसी थी, इमाम ने उसको पसंद नहीं फरमाया। इल्म अगर चाहे आपको फिक्री एतबार से हासिल हो चुका कि शरायती सेहत नमाज की है, उसके तहत नमाज बातिल नहीं होती, लेकिन क्या कबूल भी हो गई, क्या उस दर्जे तक भी पहुँच सकी कि आपको मुख्तलिफ फवाहिश और बुरे कामों से रोक सके, इसके इसका हम आगे चलकर तस्करा करें। एक और पॉइंट जो उलमा ने लिखा है, तो सबसे पहले हम उससे शुरू करते हैं कि नमाज की इब्तदा जाहिर है कि वजू से होती है। अच्छा आप देखिए कुछ कुछ ऐसे ऐसे पहलू, मैं सिर्फ इशारे, क्योंकि पूरे आज की गुफ्तगू में मैं नमाज को पूरा ख़त्म करना, एक एक मौजू ऐसा है कि अगर सिर्फ सजदे पे मसलन गुफ्तगू की जाए उसके अगर पहलू बताए जाएँ तो खुद इतने ज़्यादा कई दरूस चाहिए, लेकिन सिर्फ एक खाका सा आपके सामने पेश हो जाए और हम अपनी नमाज को उस खाके से कंपेयर करते चले तो आपको पता होगा कि ये किस किस्म की नमाज बन रही है। उलमा ने कहा कि देखिए सबसे पहले कि जब इंसान वजू करता है तो पानी से वजू करता है, हमेशा नूरानी कमालात को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान गौर तो करे कि खुदा की कैसी नेमत है और कितनी फरावानी से आपको दस्तियाब, तो सबसे पहले जब भी निगाह पानी के ऊपर पड़े वजू के लिए तो शुक्र खुदा जबान से अदा होना चाहिए, तब ये कमालात अपने दिखा पाएगी नमाज। पानी कितनी फरावान चीज़। फिर आगे उलमा ने लिखा कि एक हदीस है कि जो किताबों के अंदर बयान की गई है। अच्छा देखिए वजू के अंदर है ना कि वजू के लिए पानी जो है वो एक मुद होना चाहिए यानी 3 पाव, और गुसल के लिए बहुत मशहूर है कि 1 सा पानी होना चाहिए यानी 3 किलोग्राम पानी। रसूल की हदीस है कि मेरे बाद एक ऐसी उम्मत आएगी कि जो इतने कम पानी को वजू गुसल में इस्तेमाल करने को हकीर समझेगी। ये बात याद रखना, वो अपने आप को मोमिन तो कहते होंगे लेकिन मोमिन नहीं होंगे। तो किस ऐसी फरावानी से जो नेमत दस्तियाब है उसको वाकई कितना इसराफ और तबज़ीर उस पानी से किया जाता है, तो इसमें भी एहतियात करने की ज़रूरत है। अगली बात उलमा ने लिखी कि अगर आपने वजू के आदाब जो हैं, इमाम खुमैनी का जुमला कोट कर रहा हूँ, अगर उनके आदाब की आपने पासदारी की तो इल्म हिकमत और नूरानियत के चश्मे फूट पड़ते हैं उसमें। हम तो देखते हैं हमें तो ना कोई इल्मियत पैदा हो रही है, ना कोई नूरानियत पैदा हो रही है, ना कोई हिकमत पैदा हो रही है, उनका कि चश्मे फूट पड़ते हैं। तो अच्छा, जब भी जो फिक्र किताबें जितनी हैं उसमें सारे वजू के अगर मुस्तहबात को हम जमा भी करें तो तकरीबन 750 मुस्तहबात से वजू के, कितने मुस्तहबात के ऊपर अमल होता है। तो नूरानियत आप खुद सोचें ना कि कैसे पैदा हो पाएगी। अल्लामा इब्राहिम अमीनी के मुतालिक मिलता है, लोग सोचते हैं कि भाई कसरत इबादत के ज़िम्न अगर से बात आगे आनी थी कि एक शब कदर के अंदर 1000 रकत नमाज पढ़ा करते थे। यानी बाज़ औक़ात देखिए इबादत की जो कमाल तक पहुंचाने वाली चीज़ें उसमें कि इबादत को थोड़ा सा मुश्किल भी होना चाहिए, अगर ये मुश्किल बाद में आसान हो जाती है शुरू में मुश्किल पैदा होती है इसके अंदर। तो बाज़ औक़ात ये नहीं कि आप कहेंगे अच्छा 750 मुस्तहबात तो अंजाम नहीं दे सकते तो सभी कुछ हाथ से छोड़ दें, कुछ तो बढ़ाते जाएँ इसके अंदर, खुद बहुत हिम्मत पैदा होती जाएगी और इंशाल्लाह वज़ू के वो असरात आप में ज़ाहिर होंगे जो कि होने चाहिए। अगला उलमा ने पॉइंट लिखा है कि आखिर इन आज़ा को वज़ू में धोया क्यों जाता है। कहा गया है कि इन्हीं आज़ा से असल में बंदगी खुदा का इजहार होता है, तो इनको रूहानी तौर पर भी पाको पाकीज़ा करना ज़रूरी है। अच्छा, वज़ू में इन चार आज़ा ही को क्यों धोया जाता है। कहा जाता है कि जनाब रसूल खुदा से मरवी हुई है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में जब ये वसवसा पैदा हुआ था कि शैतान ने उनके दिल में डाला कि वो दुरूद भेजेंगे मोहम्मद दोबारा दुरूद तो हज़रत आदम जब उस दरख्त तक चल कर गए थे जब शैतान ने वो दिल में वसवसा डाला और आदम दरख्त की तरफ चल कर गए तो जैसे उन्होंने दरख्त की तरफ निगाह की तो आदम के चेहरे की जो नूरानियत थी फौरन जाहिर हो गई। जब उन्होंने दरख्त की तरफ हाथ बढ़ाया उस फल को तोड़ने के लिए फौरन आदम को एहसास हो गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई करके औला जो उनसे बोला, फौरन आदम ने अपने सर पर हाथ रखा, आदम ने बल्कि अपने सर पर हाथ रखा। तो कहा गया कि इन्हीं क्योंकि आदम उन्हीं कदमों से चलकर गए थे, ठीक है आदम उन्हीं कदमों से चलकर गए थे, इस वजह से कदमों का मसा जो है लाजमी करार दिया गया, इसकी तथहीर की जाए। आदम ने दरख्त हाथ बढ़ाया था और चेहरा उसकी तरफ किया था और सर पे हाथ रखा था, तो इन तमाम आज़ा की जो नूरानियत जाहिर हुई। और उसके बाद क्योंकि आदम की सुलभ में तमाम के तमाम लोगों को पैदा होना था तो खताए आदम के असरात उनकी सुलभ में भी आए, इस वजह से तमाम उम्मत के ऊपर लाजमी करार दिया गया कि इन चार आज़ा की तथहीर करें और उस खताए आदम का मदावा करें जो उनके जज्बे की थी। मनाफी कमाल काम किया था उन्होंने, कमाल उनकी उम्मत में से भी कम होता चला गया। फिर उलमा ने कहा कि ये देखिए जो पानी की खसूसियत है, देखिए वही मैंने कहा कि रूहानी पहलू की तरफ लेकर जाए, पानी हमेशा हर चीज के अंदर घुल मिल जाता है, पानी घुल मिल जाता है लेकिन अपनी खासियत बरकरार रखता है। उलमा कहते हैं कि बस मोमिन को भी चाहिए कि वो लोगों में घुल मिल जाए लेकिन बुरे लोगों के साथ बैठने में वो अपनी खासियत को मुतासर ना होने दे। मसलुल मोमिनुल खालिस का मसले माउल खालिस, रसूल की हदीस है, मोमिन खालिस को माए खालिस की तरह होना चाहिए, पानी खालिस की तरह होना चाहिए। किसी किसी चीज़ के अंदर भी वो जाता है तो अपना तशख्स बरकरार रखता है और उसके अंदर घुल मिल जाता है, लोगों में घुले मिले लेकिन उनके असरात बद अपने तक ना पहुँचने दें। तो एक इसका एक पहलू ये भी। फिर अच्छा ये जो हम यहूदियों ने एक दफ़ा पैगम्बर इस्लाम से एक सवाल किया कि या रसूलल्लाह ये बताइए कि आखिर आपकी उम्मत को 30 रोजे क्यों फर्ज हैं आपकी उम्मत पर। तो कहा कि क्योंकि आदम ने जो फल खाया था उसके असरात 30 दिन तक उनके जिस्म के अंदर रहे, तो जो रूहानी कमी वाकई हुई थी और फिर उसके बाद उनकी उम्मत के अंदर भी कमी आई तो उसने 30 रोजे फर्ज किए गए ताकि उन असरात को जाहिर किया जा सके। फिर फरमाते हैं कि अच्छा जहर के वजू, अभी मैं सब पहलू बयान कर रहा नहीं, सिर्फ कुछ कुछ इशारे करते गुजरना है। कहा जाता है कि जब इंसान गुस्ल करता है ना, असल में मसलन फॉर एग्जांपल अगर गुस्ले जनाबत है, गुस्ले जनाबत के अंदर इंसान का पूरा जिस्म फना मादियत में फना हो जाता है जिसकी वजह से उसका गुस्ल वाजिब होता है, इस वजह से पूरे जिस्म को धोया जाता है ताकि मादियत के अंदर जो फना जिसे मौजूदा था उससे बाहर निकला है। उलमा और आरिफीन के मुतालिक कहा जाता है कि वो जब गुस्ले जनाबत करते हैं तो मादियत की 150 हालतों से बाहर निकलते हैं, 150। अच्छा, लेकिन हमारे अंदर तो कोई उसके असरात पैदा नहीं हो, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसे रूहानी पहलू हैं इन सब चीज़ों के अंदर जिनको हम कोई अहमियत देने को तैयार नहीं, ना वजू को और ना गुस्ल। अच्छा, उस्ताद मोहसिन क़िराती, एक किताब हाल ही में उर्दू तर्जुमा होकर आई है और दारुस्सकाफ़ा ने इसको शाया किया है तजल्लियात नमाज के नाम से, आप ज़रूर लें उसको, ज़रूर पढ़ें, बेहतरीन किताब है उस्ताद मोहसिन क़िराती की, सिर्फ और सिर्फ नमाज के मौजू पर। मैं उसमें से एक आपको चीज़ पढ़ के सुना रहा हूँ। कहा जाता है ना कि सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी मिसाल से इसको वाज़ेह किया है कि नमाज मोमिन की मेराज कैसे। वैसे आयतुल्लाह दस्तेवी शिराज़ी ने तो कहा कि मोमिन की नमाज को मौका में सिदरा, जहाँ रसूल खुदा पहुँचे थे वहाँ पर एक रजिस्टर है जहाँ से जो मकबूल नमाजें होती हैं वो मुकाम सदरा में जाकर उनका इंदराज किया जाता है। इस वजह से भी इसको नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया। लेकिन उनका कहा देखिए मेराज में होता क्या है, नमाज में आप परवरदिगार आलम का तकर्रुब हासिल करने के लिए सफ़र को इख्तियार करते हैं। सफ़र होता है ना परवरदिगार आलम की तरफ। अच्छा, जब सफ़र होता है तो सफ़र को समझें कि नमाज जो है एक जहाज़ है, जाहिर है कि मेराज की तरफ आप जा रहे हैं ना, ज़मीन से बुलंदियों पर जा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ मुशाबहतें की, देखिए नमाज मोमिन की मेराज कैसे। फरमाते हैं कि देखिए जब जहाज टेक ऑफ करता है, ज़मीन से बुलंद होता है, उस वक्त उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स की ज़रूरत होती है। ऊपर जब स्टेबल फ्लाइट हो जाती है तो जहाज़ के इंजनों पर इतना लोड नहीं पड़ता, उस वक्त उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर इस्तेमाल। कहा कि जैसे ही नमाज का आगाज़ होता है शैतान तमाम लश्करियों के साथ उस पर हमलावर हो जाता है, उसका दिमाग खुशी व खुशू से इधर उधर हटा देता है। तो उस वक्त मोमिन को ज़्यादा अपने क़ुव्वत ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है, समझे, जिस वक्त जहाज़ ने टेक ऑफ किया। बाद में हो सकता है कि इतने ज़्यादा आपको ज़रूरत ना पड़े, शुरू में आपको इससे बहुत ज़्यादा अहतमाम की ज़रूरत है। आगे फरमाते हैं कि असल में परवाज़ को उसी वक्त कामयाब करार दिया जाता है जब वो सही सालिम ज़मीन पर उतर आए। तो नमाज कबूल होकर ख़त्म हो तब इस परवाज़ को कहा जाएगा कि ये बिल्कुल सही सालिम परवाज़ थी। पता चला बीच में तो खुशी खुशी इधर से उधर हो गया, बस आपने उठक बैठक की और उसके बाद नमाज ख़त्म हो गई, तो इसको कहा जाएगा कि परवाज़ सही ना हो सकी। तीसरी उन्होंने मिसाल दी है कि आप देखें जहाज़ जो है कभी भी एक पर से नहीं उड़ सकता, दोनों पर होने चाहिए सही। हकूक़ुल्लाह के साथ हकूक़ुल्इबाद का अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो नमाज के कबूलियत का इम्कान नहीं। अगर मोमिन की गिबतें कर रहे हैं, उसको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं ज़बान से किसी और तरीके से, इसका मतलब है कि नमाज दो परों पे नहीं। हकूक़ुल्लाह तो पूरे कर रहे हैं कि नमाज पढ़ रहे हैं, हकूक़ुन्नास के अंदर कमी वाक़ हो गई, इसका मतलब कि नमाज को दो पर तो चाहिए। फिर फरमाते हैं कि देखिए जब जहाज़ ज़मीन से उड़ता है तो उससे पहले कितना ज़्यादा रनवे के ऊपर दौड़ता है। कहा कि बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी है कि जिस नमाज से पहले अजान और अकामत और दुआएं जो पढ़ने समझे कि उस वक्त वो दौड़ रहे हैं, जिस तरीके से जब एकदम से जहाज तो नहीं उड़ जाता ना, कुछ दौड़ता भी। और कहा कि बिल्कुल इसी तरीके से जिस वक्त इंसान नमाज को ख़त्म करता है और जहाज़ जो है जिस वक्त उतरता है ज़मीन पर, तो क्या फ़ौरन उतर के उसी जगह खड़ा हो जाता है? नहीं, उसके बाद भी तेज़ तक चलता रहता है तेज़ रफ्तारी के साथ। तो कहा कि नमाज के बाद ताक़ीबात की मिसाल बिल्कुल ऐसी कि इंसान उसके बाद तक उसके अंदर मशगूल रहे। कहा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने इस तरह से मुमासिलतें पेश की हैं। फिर फरमाते हैं कि पायलट का होना ज़रूरी है कि उस बिल्कुल सही व सालिम हो पायलट जिस्मानी एतबार से भी। कहा कि रूहानी एतबार से कल्ब सलीम का रखना ज़रूरी है नमाजी के लिए, तब वो मेराज मोमिन उसको मिल सके। फिर फरमाते हैं कि जहाज़ के अंदर जो पहली ख़ता है वो बिल्कुल आखिरी ख़ता शुमार होती है। इसी तरीके से नमाज के अंदर भी अगर एक सेकेंड को भी रियाकारी वगैरह आ जाए तो फ़ौरन नमाज बातिल हो जाती है। फिर एक और मिसाल दी है कि हमेशा पायलट कंट्रोल टावर के अहकाम का पाबंद होता है, अगर अपनी तरफ से कुछ करेगा तो जहाज़ को नुकसान पहुंच जाएगा। कहा कि बिल्कुल ऐन फितरी मसाइल के तहत नमाज होनी चाहिए जिस तरीके से परवरदिगार आलम ने बताए, इससे हटकर अगर आपने इधर उधर कहीं नमाज को लेके गए तो नमाज वो परवाज़ जो है आपकी गिर जाएगी। फिर फरमाते हैं कि जिस वक्त जहाज़ को पायलट बहुत ऊँचा ले जाता है तो इमारतें कितनी छोटी छोटी होती चली जाती हैं। कहा कि मेराज मोमिन पर जब इंसान पहुंचता है तो दुनिया उसकी निगाहों में उतनी हकीर हो जानी चाहिए। फिर आगे फरमाते हैं कि जहाज जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना ही इसमें जुम्बिश कम होती है, यानी अगर फोकर तैयार है आपने देखा कितने झटके वटके लेता है, जितना भी बड़ा जहाज होता है उतनी फ्लाइट स्मूथ होती है। तो कहा कि तन्हा नमाज पढ़ने के अंदर ही कि जहाज में जुम्बिश है, जमात के साथ पढ़ेंगे तो उसके अंदर कोई जुम्बिश नहीं होता। फिर फरमाते हैं कि जिस वक्त इंसान खुद दुनिया जमीन पर कितना ही परेशान रहे दुनियावी मामला, जैसे ही वो जहाज से बैठ के ऊपर परवास करता है नीचे की जो परेशानियां वो सारी उसकी गायब हो जाती है। उस वक्त आप गौर करेंगे कि दुनिया की जो परेशानियां आपको लाहक नहीं होती, इस वक्त फ्लाइट में बैठे हुए। तो कहा कि जिस वक्त इंसान नमाज पढ़ रहा होता है तो उस वक्त तमाम मादी चीज़ों से अपने आप को एक तरफ कर लेता है। तो इस तरह उन्होंने तकरीबन बहुत सारी मिसालें दी हैं और कहा कि बहरहाल जब जहाज़ की फ्लाइट ऊपर जाती है, जहाज़ जब ज़रा ऊपर जाता है और फिर बाजों का थोड़ा सा नीचे आता है तो कहा जाएगा कि इसने तनज़ुल इख्तियार की, अगर जब ज़मीन के एतबार से तो फिर भी बहुत बुलंद है। तो कहा कि मुकर्रबीन कभी अपनी नमाज को बेहतर नहीं समझते, हसनातुल अबरार सैयातुल मुकर्रबीन कहते नहीं हमारी नमाज फिर भी कुछ नहीं, वो अपने आप को हमेशा तनज़ुली में महसूस करते हैं। और इतनी उन्होंने इससे मुमासिलत करके मिसालें दी हैं कि मैंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा उन्होंने तजिया पेश किया, तो आपके सामने ज़रूर पेश किया जाए। अच्छा, वज़ू और गुस्ल या गुस्ल से अगर आप फारिग हो गए उसके बाद आता है मरहला अजान का। अजान के मुतालिक उलमा ने लिखा है कि अजान आखिर ज़रूरी क्यों है। देखिए, अब तक तो आप ये सुनते आए हैं कि भाई अजान कहना उससे पहले मुस्तहब है, ज़रूरी क्यों है अजान। कहा कि देखिए दो तरह के लोग हैं, एक हैं खासान खुदा और एक हैं महजूबीन, जो पर्दों में हैं, खुदा से बहुत दूर हैं। ये इस वजह से अजान को यानी मुस्तहबात में ज़रूरी ख्याल किया गया है कि कहीं खासान खुदा जो शौक़ परवरदिगार के अंदर इतने ज़्यादा बेताब रहते हैं, अगर एकदम से नमाज शुरू कर दी तो उम्मीद है कहीं कि रूह कफ़ सरी से परवाज़ न कर जाए परवरदिगार से मुलाकात के शौक़ में। कहा कि अजान और अकामत में इनको रूह को ज़रा सहारा मिलता है। और महजूबीन जो है हमारी तरह के लोग, कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबाना और गुस्ताखाना मंज़र खुदा में हाजिर हो जाए। अजान और अकामत से थोड़ी सी तैयारी कराई जाती है, यानी आप ये देखेंगे ना अजान और अकामत की उस लिहाज से अपनी हैसियत, और जिनका मुकाम बहुत ज़्यादा बुलंद है उनको तो परवाज, ऐसा ना हो कि रूह कफ़ सरी से परवाज़ कर जाए शौक़ मुलाकात में। कहा जाता है ना अजान नमाज में इंसान परवरदिगार से मुलाकात करता है, लेकिन हमारे तो किसी कभी मुलाकात नहीं हुई, इस वजह से नमाज को ऐसा नहीं बना पाए। अच्छा, फिर आगे फरमाते हैं कि भाई अगर चलें आपको मस्जिद से अजान देनी है, लोगों को बुलाना है, अगर अजान का मकसद ये, तो जिस वक्त आप घर में बिल्कुल अकेले होते हैं उस वक्त आपको अजान का हुक्म तब भी मुस्तहब है अजान देना, क्यों? एक सवाल है ना। तो भाई ठीक है, अजान से लोगों को बुलाना मकसद कि नमाज के लिए आइए, आप घर के अंदर हैं बिल्कुल, दरवाज़ा बंद है, ना किसी के आने का इम्कान है, फिर भी अजान देना क्यों मुस्तहब? कहा कि जो आपकी मुमलिकत नफ्स है ना, इसमें खुदा की तरफ से कुछ मामूर फरिश्ते, और इस मुमलिकत नफ्स के अंदर ताकतें भी हैं। इस मुमलिकत नफ्स आप कुछ ताकतें हैं ना, कुवा गज़बिया है आपके अंदर, कुवा शहवानिया है आपके अंदर, तो अल्लाह के जो इसमें आज़म हैं उसका ऐलान आप अपनी मुमलिकत नफ्स में करते हैं ताकि तमाम कुवतें मुसख़र हो जाएं परवरदिगार के इस्म के आगे। ये जो बार बार ये अजान देने का जो हुक्म है, ये अपने नफ्स के अंदर उस इसमें आज़म को परवरदिगार के पहुँचाया जाता है कि ये जो नफ्स की कुवतें सरकशी इख्तियार करती हैं ना, इनकी ये सरकश ना होने पाएँ, बार बार इनको दबाया जाता है परवरदिगार का नाम का ऐलान कर कर। देखिए बहरहाल अजान किस तरह के पहलू भी। फिर एक फरमाती हैं कि चार मरतबा आप अल्लाह अकबर कहते हैं ना हाथ उठाकर, हर एक दफ़ा अगर आपने शरायत के तहत कहा, जो कमाल की शरायत हैं जो भी आगे चलकर भी आएंगी, तो एक दफ़ा से हाथ उठाना अल्लाह अकबर के लिए एक पर्दा चाक कर देता है परवरदिगार आलम के खुद तक पहुँचने के लिए। इसका मतलब है कि वही मैंने कहा ना कि 70,000 नूरानी और 70,000 जुल्मानी हिजाबात हैं, पर्दे लगे हुए हैं परवरदिगार तक पहुंचने के। एक तकबीर शरायत के साथ कहने से एक पर्दा चाक, दो तकबीर कही दो पर्दे चाक, चार और उसके बाद आखिरी के दो अल्लाह अकबर, छः पर्दे तो आप वैसे ही चाक कर सकते हैं। तो कितने जल्द आप परवरदिगार में कुर्ब नसीब हो सकता है अगर जानते हुए और अजान की अज़मत को समझते हुए अजान कही जाए। फिर आगे फरमाते हैं कि जिस वक्त इंसान, असल में हमें तो पता नहीं ना, हमें तो बस ये पता है हाँ भाई अजान व अकामत का कहना मुस्तहब है, जिस वक्त इंसान अल्लाह अकबर कहता है, अजान और अकामत कहता है, तो जैसे ही वो कहता है ना, अगर रिवायत के अंदर है कि अगर सिर्फ अकामत कहता है तो मलाइका की पूरी सफ उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है नमाज के लिए, वो उस वक्त पेश इमाम हो जाता है अगर सिर्फ अकामत कहे। और इमाम ने बताया कि आपको पता है कि ये सफ कितनी बड़ी होती है, कहा इसकी कम से कम लंबाई जो है वो मशरिक़ और मगरिब के दरमियान जितना फासला है उतनी होती है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है उतनी होती है मलाइका की सफ। और अगर इंसान अजान और अकामत दोनों कहे नमाज से पहले तो मलाइका की इस तरह की दो सफ़ें उसके पीछे नमाज पढ़ती हैं। यानी अगर इंसान वाकई इसको समझते हुए अंजाम दे तो कितनी उसकी अजमत, यानी फ़ौरन अजान और अकामत के बाद ख्याल दिल में आएगा कि मेरे पीछे सब मलाइका की सफ़ें दुरुस्त हो रही होंगी, कितनी उसको जज्बे के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। कहा जाता है कि जब रिवायात के अंदर मिलता है कि जब जनाब रसूल खुदा आसमानों पर गए थे शब मेराज, रिवायत में कि रसूल खुदा मेराज पे जिस वक्त गए थे उस वक्त खाना काबा के साए में लेटे हुए आराम कर रहे हैं कि जिब्रील जन्नत के पानी का भरा हुआ तश्त रसूल के सामने लेकर आए और कहा कि आपको चलना है मेराज पर, लेकिन उससे पहले जन्नत के पानी से गुसल करें। जनाब रसूल खुदा ने गुसल किया और उसके बाद फिर वो पूरी तफसीलात के वो किस तरीके से बुर्राक आया और आसमानों की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान पर जब पहुंचे तो रिवायत में कि पहले आसमान का एक दरवाज़ा है, इमाम खुमैनी ने इस रिवायत को लिखा है, पहले आसमान का एक दरवाज़ा है जहाँ मामूर फरिश्ते हैं। फरिश्तों ने जब वो जन्नत वो पहले आसमान का दरवाज़ा खोला और जनाब रसूल खुदा और जिब्रील वहाँ पर पहुँचे तो जनाब रसूल खुदा का नूर देख कर फरिश्तों ने एक नारा बुलंद किया और कहा कि अच्छा देखिए रिवायात के अंदर जो जुमला है वो कोट कर रहा हूँ, दो खुदा हैं, एक ज़मीन में एक आसमान में, और ये नूर हमारे परवरदिगार आलम के नूर से किस कदर मुशाबे है। उस वक्त जिब्रील ने अल्लाह अकबर तकबीर बुलंद की चार मरतबा अल्लाह अकबर का। ये वो वाक़ा है कि इमाम मासूम एक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे और वहाँ अजान की इब्तदा के मुतालिक गुफ्तगू होने लगी तो इमाम ने पूरी ये हदीस और ये वाला वाक़ा सुनाया। तो जब पहला आसमान के ऊपर जनाब रसूल खुदा पहुंचे तो फरिश्तों ने कहा, जिस वक्त अल्लाह अकबर चार मरतबा जिब्रील ने कहा, फरिश्ते समझ गए कि नहीं ये परवरदिगार आलम का नूर नहीं है। बल्कि एक जुमला है रिवायत के अंदर कि फरिश्ते मायूस हो गए, ये परवरदिगार आलम का नूर नहीं है। पहला आसमान फतह हो गया, अब जनाब रसूल खुदा दूसरे आसमान पर गए। दूसरे आसमान पर भी ये वाकया पेश आया, रिवायत में जुमला है कि फरिश्ते जो है वो रसूल खुदा के नूर को देखकर गिरते पड़ते जा रहे, ताब नहीं ला पा रहे थे जनाब रसूल खुदा के नूर की। उस वक्त जिब्रील ने आवाज दी, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद तीसरे आसमान के ऊपर जनाब रसूल खुदा पहुंचे, वहां भी यही वाकया पेश आया। फिर जिब्रील ने कहा, अशहदु अन मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर जब चौथे आसमान में पहुंचे, अब तमाम फरिश्तों को पता चल गया था कि जनाब रसूल खुदा तशरीफ लाए। जैसे ही फरिश्तों को पता चला, अब रिवायत का जुमला है कि सारे फरिश्ते आकर रसूल खुदा को सलाम करने लगे और अमीरुल मोमिनीन की खैरियत दरियाफ्त करने लगे। अजान की इब्तिदा कैसे हुई, किस तरीके से अजान की कितनी तारीख क्या है, तो बहरहाल ये एक अच्छा। फिर खुद एक मौके पर जनाब हजरत बिलाल एक दफा हजरत उमर इनसे टकरा गए और कहने लगे कि क्या वजह है कि जब अबू बकर नमाज पढ़ाते हैं तो बिलाल तुम उनके लिए अजान नहीं देते, जबकि अबू बकर ने ही तुम्हें आज़ाद करवाया था। अच्छा, हजरत अबू बकर ने पैसे दे के बिलाल को गुलामी से आज़ाद करवाया था। बिलाल ने कहा, यह बात बताओ कि अबू बकर ने जो मुझे आज़ाद करवाया था कि परवरदिगार आलम की वजह से आज़ाद करवाया था, अगर परवरदिगार आलम की वजह से आज़ाद करवाया था तो इसका एवज़ मुझसे ना तलब करें, और अगर बस ये कि मेरी वजह से आज़ाद करवाया था तो ठीक है, मैं दोबारा उनके गुलामी में आने को तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स की जमात के लिए अजान देने को तैयार नहीं हूँ जिसको रसूल खुदा ने खलीफा न बनाया। तो बहरहाल अच्छा, आप देखिए उलमा ने लिखा है कि बिलाल जैसे बिलाल जनाब रसूल खुदा के पार्लियामेंट के स्पीकर समझा जाए उनको, यानी इस्लाम के अंदर इस किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ज़ात और बिरादरी के हवाले से या मसलन माशी माशरती मुकाम और मरतबे के हवाले से। आखिरी ज़माने की जो रिवायतें हैं उसके अंदर है कि अजान को इतना हकीर समझ लिया जाएगा कि बहुत पस लोगों को अजान कहने के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बाकायदा आप नहीं देखते कि एम्प्लॉय मुकर्रर किए जाते हैं मस्जिदों में जिनके ना कोई माशरे के, यानी इतना फकीर नमाज को अजान को समझा जाएगा। और जब आखिरत में तमाम के तमाम लोग पहुँचेंगे और उस वक्त जब सबके चेहरे शर्म से झुके होंगे, उस वक्त सिर्फ अजान कहने वालों के चेहरे सर बुला दूसरे तक अजान की अपनी अहमियत है। अच्छा, उलमा ने एक और इरफानी अजान से रिलेटेड एक बात आ गई बीच में, बात याद आ गई, कहा कि देखिए जब आप अजान नमाज के अंदर क्या है मेराज मोमिन सफ़र एक आप करते हैं। अच्छा देखिए, सफ़र कब आपको मुसाफिर कहा जाता है, शेख़ी किताबों के अंदर नहीं मिलता कि जनाब आप शहर की जो दीवारें हैं वो नज़र आनी बंद हो जाएं, शहर की मस्जिदों की अजानों की आवाज़ आनी बंद हो जाए। तो कहा कि आपको उलमा ने लिखा है उलमा इरफान ने, क्या आपको मुसाफिर इलल्लाह उस वक्त कहा जाएगा कि जब खुद ख्वाही के शहर की दीवारें नज़र आना बंद हो जाएं और अपनी खुद ख्वाही के इजहार की आवाज़ें अजा आनी बंद हो जाए। इंसान क्या ना अपने आप को कुछ ना कुछ समझता है हर आदमी, जब तक कुछ अनानियत कुछ उसके अंदर बाकी, खुद ख्वाही के इजहार की आवाज़ें अजा कान में जब तक आपके आना बंद ना हो जाए, जब तक आपको मुसाफिर इलल्लाह नहीं कहा जा सके। आपने सफर किया ही, आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो तकब्बुर से अपने आप को बचाना ये तो बिल्कुल इतना लाजमी और जरूरी है, समय कातिल किसी भी इबादत के, किसी भी उनवान से इंसान के अंदर अगर कोई तकब्बुर पाया जाए उसे राह खुदा का मुसाफिर कहा ही नहीं जा सकता। आगे फरमाते हैं, अच्छा कहा यह भी जाता है एक रिवायत में है कि वाहिद एक अजान ऐसा कलमा है जमीन वालों का जिसे आसमान वाले सुनते हैं, वरना जमीन की कोई आप हम जो बातें कर रहे हैं वो आसमान वालों तक नहीं पहुंचती, सिर्फ अजान एक ऐसा कलमा है जो आवाज वहां तक पहुंचती है। और उलमा ने एक चीज और ताकीद लिखी है और ये बहरहाल अमल के अदवार से भी बहुत बेहतरीन है, उलमा ने लिखा है कि अजान जिस वक्त घर में कोई बीमारी हो उस वक्त आवाज़ बुलंद अजान कहने की बहुत ताकीद आई। तो अगर कभी ऐसा मौका पेश आ जाए घर में कोई बीमारी, तो घर में अजान दें बुलंद आवाज से तो देखें बीमारी कैसे दूर होती
है।
फिर कहा जाता है कि जिस वक्त भी अजान जब हो ना तो कयामत के रोज मनादी का तस्वुर करें, एक मनादी एक निदा देगा और सबके सब लोग मैदान कयामत में जमा किए जाएंगे। तो जैसी अजान की आवाज आपके कान में आए आप फौरन मनादी का तस्वुर करें। अच्छा बाज़ औक़ात दिल में ख्याल पैदा होता है कि आखिर हमें कैसे पता चले कि आखिरत में हमारा अंजाम क्या होगा, उलमा ने कहा इसका एक तरीका है, अगर अजान की आवाज़ सुनकर आपके दिल में सरूर पैदा हो एक निशाद पैदा हो तो समझ जाएं कि वहाँ इंदिया मिल जाता है कि वहाँ पर भी आपका अंजाम अच्छा होगा। और अगर कोई जज्बा पैदा नहीं हो रहा या आवाज़ आई वो इतनी मुसीबत आ गई और नमाज को जाना पड़ेगा कहरान जबरन माज़ल्ला, तो समझ जाएं कि वहाँ अंजाम बुरा हो सकता या मशकूक होगा। ये एक इंडिकेशन है कि आप अपने आप को फौरन उस अजान को अपने दिल पर पेश करें और देखें कि उस वक्त क्या आपके दिल के अंदर कैफियत होती है। अगर कोई लुत्फ कोई सरूर और एक निशाद की कैफियत है तो अंदिया मिल रहा है, इशारा मिल रहा है कि वहाँ पर अंजाम बखैर होगा। अच्छा जिस वक्त आप उलमा ने लिखा है जिस वक्त आप शहादत देते हैं ना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा कि शहादत देके किसको कहा जाता है कि आप किसी चीज़ के मुताबिक गवाही दे रहे हैं जबान से और दिल से भी उसको वैसे ही समझ रहे हैं, कहा जाता है कि वो उसको मुनफाक कहा जाएगा कि जबान से तो शहादत दें और दिल से उसके बरखिलाफ अमल कर रहे हैं। तो अगर जनाब रसूल खुदा की रिसालत की गवाही और आइमा की इमामत की गवाही आप दे रहे हैं और जबान से तो दे रहे हैं शहादत दे रहे हैं, देखिए फिकह एतबार से शहादत के क्या मायने हैं कि दिल से भी आप वैसे ही समझते हैं उसको, और अगर वैसे आप नहीं समझ रहे तो कहा जाएगा कि आप मुनाफिकत कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं अजान। अगर अमल आपका बरखिलाफ है उनकी सीरत की पैरवी नहीं कर पा रहे जिनकी आप शहादत दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि निफाक पाया जाता है। किसी भी पाए का सही ज्यादा या कम बहस का मौका है। अच्छा फिर उसके बाद अजान के बाद बारी अजानी के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और फिर अली वलीउल्लाह के बाद तीन हय्या आते हैं जिसको है इलाद कहा जाता है प्लूरल है इलाद, हय्या अलस्सला हय्या अलस्सला हय्या अलफला हय्या अलफला और फिर हय्या अला खैरिल अमल। कहा जाता है कि जब अल्लाहु अकबर के बाद और खुदा की जो वहदानियत है उसकी गवाही देने के बाद और जनाब रसूल खुदा की रिसालत की गवाही और मौलाए कायनात की इमामत की गवाही जब आप दे लेते हैं तो उसके बाद अब महजर खुदा में इन गवाहियों के साथ अपने आप को पेश करते हैं। ये हय्या अलस्सला जिस वक्त कहा जाता है उस वक्त का मौका कि परवरदिगार अब मैं आ गया, यानी बहुत उस वक्त इंसान अगर गौर करे कि क्या जुमले वो जबान से निकाल रहा है, महजर खुदा में ये तमाम गवाहियां जमा करके अब मौजूद हो गया कि मैं आ गया, तो इंसान उस वक्त अपने आप के दिल की कैफियत को गौर करेगा। कोई जज्बा वज्बा कुछ नहीं पैदा हो रहा तो कोशिश करे इसके तरीके हम आगे चल के भी गुफ्तगू आएंगे कि खुशियों को जो पैदा कैसे किया जाए। फिर उसके बाद आप कयाम के लिए नमाज में खड़े हो जाते हैं। अच्छा नियत से पहले तो कयाम होगा ना, कयाम माने खड़ा होना, कहा कि जिस वक्त आप खड़े हों दोनों कदमों पर जाए नमाज के ऊपर तो बस ये समझें कि जैसे आप उन्हें सिरात पर खड़े। उलमा इरफान कहते हैं कयाम के लिए नमाज में खड़ा होना ऐसा ही है जैसे कयामत पुल सिरात पर खड़ा हो, जरा सी एक लफ्ज़िश नीचे गिरा सकती है और पाए कमाल से आप नीचे आ जाएंगे। कयाम के वक्त खड़े होने के अंदर बड़ी कैफियत है, हमेशा दिमाग में लेकर आए कि जैसे हम पुल सिरात पर खड़ा हो। पुल सिरात पर कितना मैंने पिछली गुफ्तगू में उनका आयतुल्लाह कोई का और आयतुल्लाह सैयद जवाहरी तबरेजी का फतवा पढ़ के सुनाया था कि क्या पुल सिरात वाकई अमरुन ऐनी है या ये कि वो कोई मजाजी चीज़ है। सबने कहा कि नहीं अमर ऐनी, आप आंखों से पुल सिरात को देखेंगे वो पुल है जो कि वहाँ पर पाएंगे। तो अपने आप को समझें कि आप पुल सिरात पर खड़े हैं, कितनी एहतियात की ज़रूरत है और कितनी अजमत आपके दिलो दिमाग में नमाज की पैदा होनी चाहिए। फिर आगे फरमाते हैं कि जिस वक्त हज़रत इब्राहिम के मुतालिक कहा जाता है, अच्छा ये है अगर हम अपनी मादी कुवतों के अतबार से देखें तो ये चीज़ें हमें नामुमकिन नज़र आती हैं कि हज़रत इब्राहिम जिस वक्त नमाज के लिए खड़े होते थे कयाम में तो उनके दिल की धड़कन की आवाज एक मील दूर तक सुनाई देती। अच्छा, हमें तो इसमें थोड़ा सा मुबालगा महसूस होता है, समझ ही नहीं आता। और वाकई अगर नूरानियत के अंदर है कि वो हिजाबात चाक हो जाएं, तो ये जमान मकान और ये जो साउंड बैरियर से कोई हैसियत नहीं रखती, एक मील के 10-10 मील तक आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। लेकिन मसला है कि उतनी ज़्यादा मादियत का गलबा हो चुका है हम पर कि हमें ये बातें यकीन करना तो गुजा शक होता है इसके अंदर कि ये बातें सही भी हैं या नहीं। जनाब रसूल खुदा के मुतालिक कहा जाता है, जिस वक्त नमाज के लिए खड़े होते थे तो सीने से एक ऐसी आवाज़ आती थी जैसे जोश खाई हुई देग में से आवाज़ आती है। जो उलमा ने लिखा है, जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिस वक्त नमाज के लिए खड़ी होती थी तो सांसों की आवाजें इस तरह के इस्तराब के अंदर कैसे होती, इस तरह से आवाजें आती थी। तो बहरहाल कयाम के अंदर खड़ा होना, कयाम के खुद एक पूरे आदाब है, इसका ख्याल रख के कयाम में खड़ा होना जरूरी है। फिर फरमाते हैं कि नीयत उसके, अच्छा कयाम में खड़े को अब नीयत करनी है। उलमा ने लिखा है कि देखिए नीयत के अंदर अगर से एक पूरा एक अलग मौजू है, इखलास से नीयत जरूर होना चाहिए। अच्छा इखलास कैसे पैदा किया जाए, हमारे अमल के अंदर कितना इखलास है, कितनी रियाकारी, इसकी पहचान के क्या तरीके हैं, बिल्कुल अलग मौजू है, इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा। आसान तरीन तारीफ ये है कि आपको रिया से पाक उस वक्त समझा जाएगा कि लोगों की सताइश की 1% भी आपके अंदर ना पाई जाए, फिर कहा जाएगा कि आपके अंदर इखलास है। और एक रिवायत के अंदर है कि मोमिन को मोमिन खालिस कहा ही उस वक्त जा सकता है कि जब दीगर तमाम लोगों की हैसियत उसकी निगाह में मेंगनी के बराबर ना हो जाए। रिवायत में लफ्ज है मेंगनी, यानी इतनी हकीर, यानी ऐसा ना हो कि मसलन जैसे मिलता भी है कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा था तो मस्जिद में कोई नहीं था, पीछे उसको कुछ आवाज़ महसूस हुई और आवाज़ महसूस होने के बाद नमाज उसने बड़े खुशोखुशू से पढ़ी, तो कोई पीछे मुझे देख रहा है, पीछे मुड़ के देखा तो कुत्ता बैठा हुआ था नमाज के बाद, उसने मुड़ के देखा, इतना उसके बाद उसके अशार हैं, इतना अफसोस कि मैं कुत्ते के लिए नमाज पढ़ रहा था। तो बहरहाल अगर किसी को कोई सताइश है, कोई जज्बा नमाज के जरिए, पावा नमाज जमात के जरिए हो या पुरादा नमाज के जरिए कोई दिल के अंदर आता है, इसका मतलब है अभी कमाल इखलास तक वो नहीं पहुँचा। आयतुल्ला सैयद अब्दुल हादी शिराजी एक हमारे मर्जी गुजरे हैं, उनके मुतालिक ये बात कही जाती है कि एक दफ़ा अपने दर्स दे रहे थे कि बहुत सारे बहुत ज़हीन तालिबे इल्म जो होते हैं ना बाज़ अवक़ात बड़े बड़े एतराज़ात शुरू कर देते हैं, उसने कुछ एतराज़ात किए, आयतुल्ला उस वक्त खामोश होकर जवाब नहीं दिया और फिर अपने दर्स ख़त्म हुआ कमरे के अंदर आ गए। वो तालिबे इल्म फिर पीछे पीछे आ गया और वही सवाल करने लगा। अब उन्होंने हर हर सवाल के 14-14 मुदल्लिल जवाब दिए, तो जो और बैठे हुए थे तालिबे इल्म ने कहा कि आपने दौरान दर्स क्यों नहीं दिए, अब क्यों दिए? कहा कि उस वक्त मैंने मेरे नफ्स के अंदर यह आया कि मैं इतना तबहुर इल्मी रखता हूँ कि एक एक सवाल के 14-14 मुदल्लिल जवाब, उस वक्त मेरे नफ्स ने बर्दाश्त नहीं किया, यानी मैंने अपने अंदर इखलास के एतबार से कि मैं सबके सामने जवाब दूँ, ठीक है सबके सामने थोड़ी सुबकी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये कि नफ्स को मैं उस वक्त शिकस्त देना चाहता था। ईरान में जिस वक्त जंग हो रही थी तो पासदारा इनकलाब का एक ऐसे सिपाही का इंटरव्यू उस पर दिखाया जा रहा था कि जिसने बहुत ज़्यादा माइंस को साफ किया था। आपको पता है माइंस का साफ करना कितने कितने फौजी के अंदर हलाक हो जाते हैं, वो जो बारूदी सुरंगों को तलाश करके उनको ख़त्म करना, और सबसे ज़्यादा उसने बारूदी सुरंगें साफ़ की। कहा कि आप ये बताइए कि तादाद बताइए कि आपने बारूदी सुरंगें कितनी साफ़ की? कहा कि काफ़ी साफ़ की। कहा कि नहीं तादाद बताइए। कहा कि नहीं, जो मेरे और साथी कहीं ऐसा ना हो कि उनमें एहसास कमतरी का जज्बा पैदा हो जाए तो मैं तादाद नहीं बताऊँ। इखलास की आप बात देखें, यानी ये वाक़ियात बयान करने का मकसद ये है कि लोगों के अंदर पता तो होगा कमाल इखलास की, लोगों की सताइश की 1% भी उसके अंदर दिल में उम्मीद ना पाई जाए, उस वक्त कहा जाएगा कि इसने कमाल इखलास को हासिल किया। कहा जाता है कि देखिए, अच्छा रियाकारी जो है ना, ये तो बिल्कुल नमाज को ऐसी फासिद करने वाली चीज़ है कि नमाज को बिल्कुल ज़ीरो बना दे, बातिल भी होती है नमाज कबूलियत की तरफ एक तरफ बात रही। कहा कि अगर रियाकारी का कभी आपको अपने अमाल पर शुबा हो तो उस वक्त शैतान एक वसवसा पैदा कर देता है आपके दिल के अंदर कि ठीक है अमल छोड़ दो। कहा कि इसको अमल छुड़वाने से आदमी ये सोचता है देखिए मैंने अमल छोड़ दिया अब मैं रियाकारी से बचे, पता चला ये और शैतान के चुंगल में गिरफ्तार हो गया, शैतान तो चाहता ही था। रियाकारी भी अगर आपको किसी अमल पे अपनी महसूस हो तो भी कसरत के साथ उसको करते जाइए, रियाकारी कभी भी हमेशा बाकी रहती नहीं है। उलमा ने लिखा एक वक्त ऐसा आएगा कि खुद ब खुद आपसे अलग हो जाएगी। पिछला एक दर्स हमारा गुनाह को छोड़ने के तरीकों पर जो हुआ था उसमें आपको याद होगा कि मैंने रज़ियुद्दीन इब्ने ताऊस का वो वाक़या पढ़ा था कि रज़ियुद्दीन इब्ने ताऊस दौरान दर्स बैठे बैठे एक दफ़ा मुस्कुराए, लोगों ने मुस्कुराहट का सबब दरियाफ़्त किया तो कहा कि आज 30 साल बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ है, 30 साल की रियासतों के बाद, कि आज मेरे आमाल रियाकारी से पाक हुए। सैयद रज़ीउद्दीन इब्ने ताऊस 30 साल तक मेहनत करते रहे और उसके बाद उनके आमाल रियाकारी से पाक हुए। तो कितना ज्यादा इसके अंदर मुसलसल अमल करने की जरूरत है, कभी भी हमेशा नहीं रहेगी ये चीज। तो बहरहाल अच्छा, फिर उलमा ने लिखा है कि बाज़ औक़ात नीयत के अंदर एक मसला और आता है कि लोग निस्बतन वसवासी बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं इसमें एक फिल्मी मसला भी बयान कर दूं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोग, अच्छा उलमा ने इस पर इसको ज्यादा पसंद नहीं किया, इस तरह आप करते हैं ना, बस नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं और उर्दू में पूरी नीयत करता हूँ मैं दो रकात फजर की वाजिब, ये कहा कि ये जो आप कर रहे हैं ना, ये वसवसे की वजह से कर रहे हैं, नीयत तो है ही, ये असल में वसवसा पैदा हो। लोग आप नहीं कह रहे, मैं बहुत से जुम्मे की नमाजों में मैंने देखा है कि पूरा पूरा सूरह अल-हम्द खत्म हो चुका होता है और उसके उस वक्त तक लोगों ने नीयत नहीं की होती और बिल्कुल आस्ता आस्ता दो रकत वाजिब और इस तरह करके जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज जमात के अंदर ये कहा जाता है कि पेश इमाम ने अगर अल्लाह अकबर कह दिया हो और नमाजी तकबीरतुल अहराम के लिए सिर्फ आमादा हो, कहीं ना हो, तब भी सबसे आखिरी सफ में खड़ा रहने वाला आखिरी आदमी भी तकबीरतुल अहराम कह सकते हैं, आमादा हो। अच्छा, आमादा होने के मायने हैं कि ये ना हो कि मसलन कोई शख्स इधर खड़ा हुआ देख रहा है, कोई पीछे खड़ा हुआ देख रहा है, कोई बैठा हुआ है अभी, इस वक्त कहा जाएगा कि नमाजी आमादा नहीं है तकबीरतुल अहराम, लेकिन सब लोग खड़े हो चुके हैं, इसका मतलब है कि सारे के सारे लोग आमादा हैं। उस वक्त फौरन लोग पूरा इंतजार करते हैं कि वहां से बल्कि खड़े होकर देख रहे होते हैं कि पूरी वो अल्लाह ऊपर कहते हैं हाथ बुलंद हो रहे हैं, फिर आखिरी इतने आधी अलहम निकल चुकी होती है। और कहा कि बेहतरीन नमाज वो होती है कि जो तकबीर औला जो है, यानी पेश इमाम की बिस्मिल्लाह शुरू होने से पहले सबकी तकबीरतुल अहराम कम्प्लीट हो चुकी है। तो कितना ज्यादा इसके अंदर यानी सवाब कम होता चला जाता है सिर्फ इस वसवसे की वजह से। तो नीयत के अंदर बहरहाल इन तमाम वसवास को, अच्छा वसवसे हमेशा आपको वजू गुसल और नमाजों के अंदर ही आते हैं। उलमा ने लिखा कि शैतानी चाल है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि शैतान आपको ये वसवसा डाले, पता नहीं मैंने खुम्स अदा किया भी या नहीं किया, तो शक में दोबारा खुम्स निकाल दो। कभी करता है शैतान, माल के अंदर ऐसा नहीं होगा कि कोई शक्की आदमी जो है दोबारा खुम्स दोबारा निकाल दे, हज पता नहीं मेरा सही हुआ नहीं, ऐसा करते दोबारा हज को चलते, इतनी मुशक्कत है, कहता नहीं हज सही हो गया होगा। लेकिन वजू के अंदर, गुसल के अंदर, नमाजों के अंदर इसमें शैतान बेवकूफ़ बना के रखता है। वसवसे से अपने आप को पीछे छुड़ाने की जरूरत है, और वसवसे से खैर ये जो वहम है इस पर भी हमारा इरादा है एक दफा कि इस पर कुछ ना कुछ गुफ्तगू की जाए कि बहुत सारे अवहम दिल के अंदर पैदा होते हैं, उनको निकालने की क्या तरीका है। कहा जाता है कि जो अपनी नेक अपने अमल को और अपनी नेकी को एक दफा जाहिर कर दे तो उसका सवाब खत्म कर दिया जाता है, और अगर दूसरी दफा जाहिर कर दे तो सवाब को काट कर उसकी जगह रियाकारी लिख दिया जाता है। तो इंसान कभी भी अपनी इबादतों को दूसरों को बता ही बहुत कराहियत है इसके अंदर, और सवाब में नेक अमल खत्म हो जाता है। आगे लिखते हैं एक हदीस उलमाए कराम नियत के सिलसिले में कि हमेशा इंसान को चाहिए कि अपनी इबादतों को छुपाए, क्योंकि परवरदिगार आलम फरमाता है छुपाना तुम्हारा काम है, उसको जाहिर कर देना मेरा काम है। हदीसों में परवरदिगार फरमाता है कि तुम अपने बातिन की इसलाह करो, मैं तुम्हारे जाहिर की इसलाह कर दूंगा। तो बहरहाल इंसान को नीयत खालिस रखनी है, लोगों की सताइश का कोई जज्बा नीयत के वक्त नहीं होना चाहिए। तकबीरतुल अहराम, जो अजान के वक्त जो तकबीरें थीं, और ये अच्छा कहा जाता है कि जो अल्लाहु अकबर पहला जो आप कहते हैं ना, इससे जो पर्दे चाक होते हैं वो तकबीरात इफ्तिताहिया, वो चार तकबीरें जो अजान में आप कह के आए हैं, उससे हटकर हैं ये पर्दे, जो परवरदिगार आलम का क़ुर्ब आपको हासिल होगा ना तो पर्दे चाक हो जाएंगे तकबीरतुल अहराम। अच्छा तकबीरतुल अहराम जिस वक्त जैसे इंसान कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाह बहुत बड़ा है, ये कहते हैं ना आप, तो फौरन उसी वक्त खुदा की तरफ से या तो आपकी तस्दीक हो जाती है या तकजीब हो जाती है। अगर नमाजी दिल से और चीज़ों को भी बड़ा समझता हो, मसलन ऐसा मौका ज़िंदगी के अंदर अक्सर और बेशतर आता है कि जिस वक्त खुदा की नीयत यानी खुदा का भी कोई हुक्म होता है और उस वक्त ख्वाहिश नफ्स कुछ और कह रही होती है, इंसान ख्वाहिश नफ्स पर अमल कर लेता है, माली कोई फ़ायदा हासिल होना होता है तो हुक्म खुदा को एक तरफ कर दे, इसका मतलब है और चीज़ों को भी बड़ा समझता है। अगर इसका अमल इसके मुताबिक नहीं है तो जैसे ही वो अल्लाह अकबर कहता है, परवरदिगार कहता है, ये झूठ बोलता है, तकज़ीब नमाज ख़त्म, कमाल तक कहाँ पहुंचेगी। अमल का जब भी बहुत ज्यादा है कि नमाज का ताल्लुक बकिया दीगर तमाम अमाल से बहुत ज्यादा है, अभी मैं मवाने जो कमाल चीजें हैं उनका तस्करा करूंगा और फिर ये जो कमाल तक ले जाती हैं उनका तस्करा। तो बहरहाल कहा जाता है जिस वक्त अल्लाह अकबर कहें, वो हाँ इजमाली तौर पर ही सही, दिल में लेकर आए कि दुनिया की हर चीज बहुत हकीर हो गई। बस एक लहजे को फैलना, फिर अल्लाह अकबर उसके साथ कहें। इसके खुद एक अल्लाह अकबर के अंदर क्या इसरार और रमूज हैं, ये इतना वक्त नहीं है कि इसको सब बयान किया जाए। अच्छा, फिर इससे पहले की कुछ दुआएं भी हैं। इन्नी वज्जहतु तो वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा मुस्लिमा व मा अना मिनल मुशरिकीन कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन की जो तकबीरतुल इहराम से पहले की जो दुआएं, इसमें भी उलमा ने ऐसे ऐसे नुकते बयान किए। कहते हैं ना हनीफ़ा मुस्लिमा, कि मैं हनीफ मुस्लिम हूँ, मुसलमान हूँ। उलमा ने कहा कि कह रहा है कि मैं मुसलमान के क्या मायने, सलामती, अभी किसी की गीबत करने वाला नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। जिस कह रहा है ना मैं तो सलामती पहुंचाने वाला हूँ, अमल से वो दूसरों को नमाज के फौरन बाद तकलीफ पहुंचा रहा है उसने, तो कहा जाएगा एक शख्स झूठ बोल रहा है। अच्छा, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी नमाज, मेरे मनासी के इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना सब परवरदिगार आलम भी। और पता चला वो तो मादी चीज़ों के हसूल के लिए उसके सारे जिंदगी का मकसद बना हुआ है। फौरन तकजीब हो जाती है, शख्स झूठ बोल रहा है। चलिए तय कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद पूरी किरात आपको शुरू करना है। उलमा ने लिखा कि देखिए कुरान की जो कुरान का हमने क्या समझ लिया इकराम, उसको चूम लिया जाए। आइम्मा का इकराम कितना समझ लिया, उनकी जरी से जाके लिपट के उसे चूम लिया जाए। कहा कि इज्जत और इकराम का इंतहाई अदना दर्जा, असल में किरात से इस्तेफादा किया जाए। जो आप किरात कर रहे हैं आइम्मा के रोजों से जो तवस्सुल अख्तियार किया जाता है, वो आप ये ना कि सिर्फ जरी को जाकर चूमना, उसकी भी अपनी जगह अहमियत है, लेकिन आपका मुकाम और मर्तबा मोमिन का बुलंद है कि इससे आगे भी तो जाए। वो अटक के रह गया वहीं पर, सिर्फ चूमा चाटी की हद तक रह गया मामला, कुरान का भी सिर्फ जाहिरी एहतराम रह गया। अच्छा, फिर उलमा ने लिखा है कि जो कैसे पता चलेगा कि जो आप किरात उसके बाद नमाज में करेंगे, आपने इस्तेफादा किया उस किरात से। कुरान की एक आयत है, तीन निशानियां बताई गई, मालूम चल जाएगा कि आपने किरात कुरान से इस्तेफादा किया या नहीं किया। आयत क्या है, इन्नमल मोमिनूना इज़ा ज़ुकिरा अल्लाह वजिलत कुलूबुहुम ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जब मोमिनीन के सामने आयात की तिलावत की जाती है, वजिलत कुलूबुहुम, उनका दिल कांप उठता है, पहली शर्त। तो नमाज में देखें किरात से दिल कांप रहा है नहीं कांप रहा, खौफ़े खुदा से अगर नहीं कांप रहा, कोई कैफियत ही पैदा नहीं हो रही, किरात से इस्तेफादा नहीं, एक शर्त पहली नंबर कट गई। ज़ादतहुम ईमाना, दूसरी शर्त, ईमान में ज्यादती होनी चाहिए, ईमान में भी कोई ज्यादती नहीं। मैंने उसमें भी एक आलिम का कोट किया था कि वो तजर्बे के लिए अपने हाजरीन के सामने कुरान कहते थे मैं आयात की तिलावत कर रहा हूँ, अब आप महसूस करके बताएं कि ईमान में ज्यादती हो रही है नहीं हो रही। कुछ लोग कहते थे कि हाँ हो रही है, कुछ कहते थे नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि ईमान में कहा जाता है कि कुरान की किरत से इस्तफादा ना हो रहा हो ना, तो इसके दो वजूहत हो सकते हैं, या तो फुकदान ईमान है या नुक्स ईमान। ईमान की इसलाह की ज़रूरत है। ईमान की इसलाह कैसे की जाए, कैसे कामिल ईमान, आयतुल्लाह दस्तगीर शिराज़ी किताब ईमान का मुताला करें, उसमें तरीके बताए गए। तीसरी चीज वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, खुदा पर भरोसे को बढ़ जाना चाहिए, दिल में खौफ खुदा आना चाहिए, ईमान में ज्यादती होनी चाहिए। और अच्छा, ईमान में ज्यादती और खौफ खुदा का नतीजा क्या है, गुनाहों में कमी होनी चाहिए, खुदा पर भरोसा ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं, इसका मतलब कहते हैं कुरान से कोई इस्तेफादा नहीं, बिल्कुल लकलकाई लिसानी जबान से एक चीज पढ़ती है, उसका कोई असरात मरतब नहीं। कहा जाता है रसूल की हदीस है कि जो किरत के ऊपर अमल ना करे वो कयामत में अंधा महसूस होगा, नाबीना। अच्छा, तफहीम कुरान, जो आप कुरान को समझ नहीं पाते ना, इसमें आई कुछ रुकावटें। इसमें पहली तो चीज है मखारिज के चक्कर में फंस जाना, ये नहीं कि उल्टी सीधी नमाज पढ़ना, लेकिन मखारिज आ गए फिर भी सारी तवज्जो सिर्फ मखारिज पर हो, ये तफहीम कुरान में आए रुकावट। शहीद सानी की किताब है इसरारुस सलात, उसमें उन्होंने तफहीम कुरान में आए रुकावटें जो हैं उसमें सबसे पहला चीज़ मखारिज को लिया। उन्होंने कहा कि कभी इंसान जो है वो ज़ुआत के चक्कर में फंस जाता है, कभी उसे तोए का अच्छू लग जाता है, पता नहीं इस किस्म के बहुत सारे उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो उसी चक्कर में फंस जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता, शैतान उसको असल में मुबतला करता है। लेकिन उस शख्स की बात हो रही है, ये नहीं कि जिसको किरत भी सही नहीं कर पा रहा हो और फिर उसको तो उस चक्कर में पड़ना चाहिए, लेकिन जो उस मरहले से गुजर गया वो फकत इसमें ना रहे, आगे बढ़ना। क्योंकि देखिए किरत कुरान, जनाब रसूल खुदा के पास एक शख्स आया और कहा कि कुरान के अंदर ये आयत है वमन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक जर्रा बराबर भी नेकी की है तो उसको देखेगा, जर्रा बराबर भी बुराई की उसको देखेगा। कह रहे कुरान में है, रसूल खुदा ने कहा हाँ है, कहा बस मेरे लिए इतना ही काफी है। یہ کہہ کے چلا گیا. رسول خدا نے کہا یہ شخص فقیح ہو کر گیا. یعنی ایک عمل بھی اگر آپ کے لیے آیت ہو جائے نا تو سارے آپ کی زندگی سدھر سکتی. لیکن مسئلہ ہے کہ ہم نے عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, تو اس وجہ سے قرأت قرآن صرف اور صرف زبان کی حد تک رہ جاتی. امام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ امام قرأت کر رہے تھے قرآن کی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. باڈی کافی دیر بعد جب امام کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بے ہوش ہونے کا کیا سبب تھا. کہا کہ میں اتنا زیادہ قرأت کے مطالب کے اندر ڈوب گیا تھا یہاں تک کہ میں نے اس قرآنی آیات کو متکلم کی زبان سے سنا, پروردگار عالم کی زبان, تجلی کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو گیا. تو یہاں تک ایسا یہ نہیں کہ یہ سب چیزیں آئمہ سے مخصوص ہیں. جملہ ہے نا بہت مشہور علماء کا کہ پرسنٹیج وائز معصوم تو آپ بھی بن سکتے ہیں, معصومیت تامہ اور کاملہ تو حاصل نہیں ہو سکتی. 5% 7% 10% 12% کچھ نہ کچھ تو آپ ایسے حاصل کر سکتے ہیں نا. تو یہ سب چیزیں یہ نہیں کہ بس آئمہ کی حد تک دیں بھائی وہی کر سکتے تھے, ایسا نہیں. عبداللہ محمد حسین طباطبائی اور دیگر علماء کرام کتنی زندگی میں مثالیں ایسے ملتی ہیں ہمیں علماء کی کہ وہ لوگ اس مقام تک پہنچے. تو مومن کو کبھی ہمت ہار کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اچھا اس کے بعد کیا ہے, قرأت کی ابتدا کس سے آپ کرتے ہیں؟ کتنی دیر درس اور جاری رہ سکتا ہے سر مجھے اگر آپ لوگ بتا دیں, کیونکہ ابھی تو
بالکل
مزید کتنی دیر جاری رہ سکتا ہے؟ آپ اکیلے ہوں گے اس میں. یہ جو کہا جاتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, استعاذہ جس کو کہا جاتا ہے, یعنی قرأت میں آپ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں. کہا کہ اگر کوئی شخص دشمن کے مقابلے پر ہو اور اس سے لڑ رہا ہو, پیچھے قلعہ موجود ہو اور دشمن کے سامنے بے یار و مددگار کھڑا ہو, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ قلعے کے اندر خود چل کے جانا, جا کر بنا لینی پڑے گی. یہ نہیں کہ قلعے والوں سے کہیں گے آئیے میری مدد کیجیے, قلعے میں جانا پڑے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو شیطان سے بچنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ رہے ہیں, تو آپ کو عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. خالی تمنا کرنے سے گناہ نہیں جائے گا, عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے وقت دماغ میں رہے کہ واقعی گناہوں سے بچنے کی نیت بھی ہونی چاہیے, ورنہ صرف ایک زبانی حرکت کی حد تک محدود رہ جائے گی اور کوئی استفادہ اب تک نہیں پہنچے گا. اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیے, ہمارے یہاں ایک نظریہ ہے کہ ہر سورے کی جو بسم اللہ ہے اس میں پہلے نیت کرنا ہوتی ہے نماز میں کہ میں انا انزلنا کے لیے بسم اللہ پڑھ رہا ہوں, میں انا آتینا کے لیے بسم اللہ پڑھ رہا ہوں. آیت تو ایک ہی ہے, اس میں نیت کی کیوں ضرورت؟ امام خمینی نے لکھا ہے اس وجہ سے کہ ہر سورے کی بسم اللہ کے الگ معنی ہیں, سورے کے اعتبار سے یہ الگ ہی معنی ہیں اس کے. بالکل اس حوالے سے آپ کو الگ سے نیت, یعنی فقہ کے اعتبار سے واجب ہے کہ اگر آپ نے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے بے خیالی میں کہہ دیا اور سورہ سلیکٹ نہیں کیا تھا, پھر آپ کا ارادہ ہوا کہ مثلا مجھے انا دینا پڑنا ہے, تو اب دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا پڑے گا. اس وجہ سے کہ ہر سورے کی بسم اللہ سے پہلے اس کے معنی الگ. اچھا بہرحال اب جلدی جلدی آگے بڑھتا جاؤں, وقت اتنا نہیں ہے. سورہ الحمد اس کے بعد پڑھا جاتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد. روایت میں کہ اس کی بھی اہمیت کو مومن کو سمجھنا چاہیے. روایات میں کہ فیصل شدہ عذاب اگر خدا کو کسی قوم پر بھیجنا ہوتا ہے, اس نے حتمی فیصلہ کر لیا مجھے عذاب دینا ہے, اور اس قوم کا کوئی بچہ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر لیتا ہے, تو مزید 40 سال تک کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. الحمد کی کوئی ہماری نگاہ میں اس لحاظ سے حیثیت نہیں بن پاتی کہ اس کی ان چیزوں کے مراتب اور درجات کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہا کہ رحمان اور رحیم خدا بے شک رحمان اور رحیم, لیکن استاد محسن کراتی نے لکھا ہے کہ اگر دریا کا پانی گیند کے اندر نہیں جا سک رہا ہے تو بیچارے دریا کے پانی کی خصوصیت, گیند اتنی سخت ہو گئی کہ اندر پانی نہیں پہنچ رہا. دیوار کے اس پار اگر سورج کی کرن نہیں پہنچ رہی تو دیوار اتنی موٹی ہے. مسئلہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت اپنی جگہ ہے, لیکن مزید استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر وہ صلاحیت بھی پیدا کرنی ہوتی ہے. ہمیشہ خدا کے مزید آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ پر رحمان اور رحیم بنے, تو کچھ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی پڑے. پھر ہے مالک, بسم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. جناب رسول خدا نے حضرت ابو ذر غفاری کو جو وصیت کی تھی اس میں جملہ یہ تھا حاسب قبل ان تحاسب, وہاں تمہارا حساب کیا جائے اس سے پہلے دنیا میں اپنا حساب کر جاؤ. تو مالک یوم الدین جب آپ کہتے ہیں کہ روز قیامت کا مالک ہے, تو اس وقت آپ کو مومنین کو ارادہ کر لینا چاہیے کہ اپنے قضا واجبات جلد سے جلد انجام دیں, کہ میں اپنی قضا نماز پڑھوں گا, اس کے بعد قضا روزے رکھنے شروع کروں گا, مالی مجھ پر واجبات ہیں, کچھ خمس ہے, کچھ رد مظالم ہے, نماز آیات ہیں، بڑا باپ بڑا بیٹا ہے تو باپ کی قضا نماز، اور کتنے دیگر واجبات. اگر ان کو قضا واجبات کو جلد سے جلد مالک یوم الدین کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا حساب لیا جائے گا اسے، اور آپ کوئی فکر نہیں کر رہے قضا نمازیں اپنی اب یا قضا روزے یا دیگر مالی واجبات اتارنی، اس کا مطلب یہ بھی بس آپ زبان سے ایسے ہی کر رہے ہیں. اگر اس کے بعد واقعی عمل آپ شروع کر دیتے ہیں، جلد سے جلد یہ چیزیں اپنے سر سے اتارتے ہیں، تو آپ نے مالک یوم الدین کا حق ادا کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. جناب رسول خدا نے ایک مرتبہ روایت میں جملہ ہے، علماء سنت نے بھی روایت لکھی ہے اور ہمارے علماء نے بھی، زمین پر ایک دفعہ جناب رسول خدا بیٹھے اور کئی خطوط کھینچے لکیریں، اور ایک سیدھی لکیر کھینچی، کہا کہ یہ والا جو خط ہے یہ میرا خط، یہ رستہ. علماء نے کہا کہ دیکھیے لوگ ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اتنا افراط کر لیتے ہیں تفریط پہ چلے جاتے ہیں کہ مثلاً وہ زیارت ائمہ ہی کو، جیسے وہابی حضرات کہ اسی کو وہ شرک قرار دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنا اوپر نکل جاتے ہیں کہ علماء نے جملہ لکھا ہے کہ مثلاً وہ کسی لکڑی یا درخت کے اوپر ہی دھاگا باندھنے کو ہی اپنا تمام ہر چیز سمجھ لیتے ہیں. یعنی میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن لوگوں کے دماغ میں جو کہا کہ ہمیشہ صراط مستقیم پہ رہنا چاہیے. کچھ لوگ تو اتنے زیادہ متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں کہ بیوی تک کا نام نہیں لیتے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو بے پردہ روڈوں پہ اپنی بیویوں کو گھماتے ہیں. تو ہمیشہ اسلام کے اندر یہ کہ افراط اور تفریط اتنا زیادہ ایکسٹریمس پہ دونوں مت جائیے، متوازی ایک خط ہے اس کے اوپر قائم رہنا. اگر آپ دیکھیں گے زندگی کے اندر ہمیشہ آپ کو ایکسٹریمزم کسی جگہ پہ نظر آ رہا، سمجھ لیں کہ اتنا صراط المستقیم کے خلاف. اس کے بعد آپ سورہ مثلاً اگر سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں، روایت میں جملہ ہے کہ اگر اتنی زیادہ اہمیت ہے سورہ کی کہ اگر ایک جمعہ گزر جائے اور کسی شخص نے سورہ توحید کی تلاوت نہ کی ہو، نمازوں سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں، تو وہ دین ابو لہب پر مرتا ہے. ایک ہفتہ گزر جائے اور اس نے سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت نہ کی. اور جملہ ہے کہ اگر کوئی 100 دفعہ روزانہ سورہ توحید کی تلاوت کر لے تو 50 سال کے گناہ لازمی خدا اس کے معاف کرے گا. تو سورہ اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، حتیٰ کہ دونوں رکعت کے اندر ایک ہی سورہ پڑھنے میں کرائیت ہے سوائے سورہ توحید کی، کہ اگر یہ دونوں رکعت میں پڑھی جائے گی تو کوئی کرائیت نہیں. سورہ قدر، جناب رسول خدا کی ایک حدیث اور ایک نسخہ ہے، جس طرح ہر گفتگو میں عمل کے لیے کچھ نہ کچھ ایک نقطہ لے کر جانا چاہیے، اس میں ایک نقطہ یہ ہے، جناب رسول خدا فرماتے ہیں جو شخص روزانہ 10 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرے گا 1000 گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے ان 10 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے. کیونکہ اگر روزانہ اپنی زندگی میں رائج کر کے دیکھیں اور اس طرح اپنے گناہوں میں کمی واقع کر دی جائیں گے. امام خمینی کے عرفان کے جو استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی، بہت امام خمینی نے ہر جگہ ان کا تذکرہ کیا ہے، اور میرے ماں باپ ان پر فدا ہو جائے تک کے الفاظ کہیں. آیت اللہ شاہ آبادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے نا، عرفانی اعتبار سے یہ پورے دورہ محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں فجر سے مراد روز قیامت کا دن، جو پورا دور گزرا ہے لیلۃ القدر جناب رسول خدا کے بعد، اور تا قیام قیامت اس کو کہا جائے گا ہی حتی مطلع فجر، اس وقت فجر ہوگی، یعنی قیامت کے دن کو کہا. اچھا ایک حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم سے عرض کی کہ پروردگار میں تیرے تقرب کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ پروردگار نے کہا شب قدر میں بیدار رہ کر تم میرا تقرب حاصل کر سکتے. حضرت موسیٰ نے اگلی دعا کی، پروردگار میں چاہتا ہوں تم مجھ پر رحم کرے. پروردگار نے کہا اگر تم چاہتا ہے کہ میں تجھ پر رحم کروں تو تو شب قدر میں فقراء کے اوپر رحم کر. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں صراط پل صراط پہ سے بحفاظت گزرنا چاہتا ہوں. کہا اگر تو پل صراط پہ سے بحفاظت گزرنا چاہتا ہے تو شب قدر میں صدقہ دے. یعنی کتنی دیکھیے اہمیت کتنی زیادہ ہے ان چیزوں. کہا کہ پروردگار میں بہشت کی نعمتیں بھی چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے بہشت کی نعمتیں چاہتا ہے تو شب قدر میں یتیموں کے اوپر رحم کر. پروردگار عالم میں آتش جہنم سے آزادی چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے تو پھر اس شب میں استغفار کر، 70 مرتبہ استغفر اللہ رب واتوب الیہ کہتے ہیں. پروردگار میں تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہا شب قدر میں 2 رکعت نماز شب قدر پر. تو اس طرح دیکھیے شب قدر، تو بہرحال سورہ قدر کی اتنی اس حد تک فضیلت ہے کہ روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ نمازوں سے ہٹ کر بھی اس کو پڑھ 1000 گناہ سے معاف ہوتے. اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں. علماء نے کہا جو آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، یہ عذاب سے معافی کا اشارہ ہے.
अल्लाह ऊपर जब कह रहे हैं ना, इसका मतलब परवरदिगार मुझ पर से अजाब को उठा ले। और करते जाएं आप क्या करते जा रहे हैं, देखिए नमाज आपकी कहां से कहां पहुंचे। अच्छा फिर उसके बाद आप रुकू में चले जाते हैं, रुकू में जाके जो आपकी गर्दन को अपनी आगे निकालते हैं ना रुकू में, कहा कि ये इशारा है कि परवरदिगार तेरे हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर लिया, अब चाहे तो गर्दन उड़ा दे चाहे जो चाहे मुझसे सलूक कर। अच्छा उलमा ने कहा कि देखिए ये फिर झूठ हो जाएगा, एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं खारजियों वाला बात हो जाएगी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैं गर्दन आगे कर दी है मैंने तेरे हुक्म के आगे, और दूसरी तरफ मसला आप नामहरमों को भी बुरी निगाह से देख रहे हैं, आप इबादतें भी कर रहे हैं, इसका मतलब है इसका परवरदिगार से आप मजाक कर रहे हैं। नीयत ये होनी चाहिए परवरदिगार सर तस्लीम हम है तेरे, किसी एक काम की खिलाफवर्जी ना करूँ, और फिर अगर करते नजर आए जरी होगा तो इसका मानने ही कि वो रुकू भी आपका कबूल नहीं होगा। अच्छा फिर उसके बाद कहा, अच्छा रिवायतों में जुमला है, रुकू में अदब है सजदे में कुर्ब है, बगैर अदब की कुर्ब नहीं मिल सकता आपको, किसी की करीब भी अगर आप जाना चाहते हैं ना, कुर्ब हासिल करना चाहते हैं किसी शख्स का, जब तक अदब नहीं करेंगे तो आपको करीब नहीं आने देंगे। तो कहा जाता है कि सजदे से पहले रुकू में बड़ी एहतियात की जरूरत है, रुकू के अदब आदाब का अगर आपने ख्याल ना रखा तो सजदे में कुर्ब खुदा भी नसीब ना हो सकेगा, रुकू भी ये समझे गए मुकदमा है परवरदिगार के कुर्ब का। फिर उलमा ने लिखा, कहा जाता है कि ये जो रुकू का जिक्र आप पढ़ते हैं ना सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दी, सबसे पहले परवरदिगार आलम ने अपने जिन दो नामों का इंतखाब किया था ये वो दो नाम है अली और अज़ीम, सब यानी अल्लाह का अस्मी जो इसमें जलाला है उसका भी रिवायत में तस्करा नहीं, अली और अज़ीम खुदा के वो दो नाम है जो परवरदिगार है सबसे पहले अपने लिए जब नाम रखे तो अपने लिए पसंद किए, वो आप उसके अंदर पढ़ते हैं। अच्छा ये भी है कि जनाब रसूल खुदा जब मेराज पर गए थे तो परवरदिगार से जब गुफ्तगू हुई थी तो इतनी इस हद तक तजल्ली हुई थी कि रसूल खुदा बर्दाश्त ना कर सके और बेहोश हो गए, और फिर जब होश में आए तो पे दर पे रसूल के ऊपर इल्हामात होने शुरू हुए, और हर इल्हाम के बाद रसूल खुदा कहते थे सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दी, सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दी, यहाँ तक कि रसात मरतबा सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दी, उसके बाद से रुकू के अंदर ये सब चीज़ें शामिल हो गई। उसके बाद सजदा, हज़रत सलमान फारसी ये कहा करते थे कि अगर सजदा ना होता तो मैं मरने की आरज़ू करता, उनका जुमला यानी बस कमाल बंदगी है। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह क्यों बने, उस रिवायतों में दो तीन बातें, पर उनमें से एक चीज़ ये भी है कि वो कसरत के साथ सजदा करने वाले, इस वजह से खलील खुदा का उनको मर्तबा इनायत हुआ। इमाम सादिक कहते हैं एक दफ़ा ख्वाह ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा ही गुनाह सही, शरायत के तहत अगर कोई सजदा कर ले तो वो कामयाब हो गए, सिर्फ एक दफा ही क्यों ना सही पूरी ज़िंदगी। तो इसके अच्छे देखिए वक्त नहीं है इतना कि सजदे की क्या बातें, आप किताबें आप मैं कुछ नाम ले दूंगा उनका मुताला करें, उसके अंदर सजदे की कैफियत आपको पता चले। ये जो कहा जाता है जब सजदे से आप अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाते हैं तो ये गोया अपनी अनानियत से हाथ उठाना होता है, अपने तकब्बुर को ख़त्म करना होता है, और दूसरे सजदे से जब उठकर बैठ के अल्लाह अकबर कहते हैं तो किसी को कहा जाता है कि फना से भी फानी हो जाता है आरिफ जो। अब बहरहाल मैं कुछ बस गुफ्तगू करता जाऊंगा, बाकी तो चीज़ें इतना वक्त नहीं है इसमें। एक सजदे के अंदर एक नुक्ता ये भी है कि जब इंसान सजदे के अंदर सर रखे तो जिस तरह सजदे में जाकर उसे इर्द गिर्द की चीज़ें नज़र नहीं आती, तो उसी तरह के तरीके सजदे के अंदर जाकर गैर खुदा को सबको भूल जाना चाहिए, जब जाहिरी चीज़ें नहीं नज़र आ रही तो बातिन की चीज़ें भी आपको इधर उधर से नज़र नहीं आनी चाहिए, बातिन से मुराद इन जो चीज़ें और इधर उधर के ख्याल हैं उन सबको हटा दीजिए। अच्छा उसके बाद है कुनूत, अच्छा अगर चाहे सीधे लेकिन ये कि अगर दूसरी रकात है उसके बाद कुनूत भी अगर आपको पढ़ना है, कहा जाता है कि मुस्तहबात में से तमाम सबसे अहम कुनूत है और वाजिबात में सबसे अहम चीज़ सजदा है, मुस्तहबात में सबसे अहम कुनूत है। फ़ायदा क्या है, उलमा ने लिखा है रिवायत में आया है कि क़यामत के दिन अगर कोई शख्स सबसे ज़्यादा राहत चाहता है तो वो इस दुनिया में तवील कुनूत पढ़ा करे, सबसे ज़्यादा राहत पाने वाला शख्स क़यामत में वो होगा जो दुनिया में तवील कुनूत पढ़ता रहा होगा। अच्छा एक मैं बस एक जुमला बीच में अगर आगे एक छोटी मसला कि कुनूत को वैसे तो आप जो राइज कुनूत हैं रब्बाना आतिना और रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बहुत सारे कुनूत, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा आम है, उलमा ने कहा कि ये तो सबसे ज़्यादा ताकीद उन कुनूत की आई, उसमें एक तो वही है वो यही है ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम वाला कुनूत। अच्छा अरबी ज़बान में तो कुनूत पढ़ ही सकते हैं आप, लेकिन उर्दू जबान में भी क्या दुआ मांग सकते हैं कुनूत में? उलमा अक्सर उलमा ने लिखा है कि किसी भी जबान में दुआ मांग सकते हैं आप कुनूत में, मसलन कोई भी आपकी हाजत है वो आप कुनूत के अंदर उर्दू के अंदर भी दुआ मांग सकते हैं वाजिब नमाज में। लेकिन कुछ उलमा ने शर्त इसके अंदर लगाई कि जरूरी है कि आप एक अरबी में जरूर कोई सी दुआ पढ़ लें उसके बाद उर्दू में पढ़ सकते हैं। वो भी सब उलमा ने नहीं कहा, लेकिन एहतियात के मुताबिक ये समझिए कि बस एक दफ़ा मसलन मसलन आप कहते हैं सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उर्दू में भी दुआ मांग सकते हैं, सलावत भी पढ़ सकते हैं, अरबी में कोई एक दुआ पढ़नी जरूरी है। अच्छा, सबसे अहम और फजीलत वाला कुनूत जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु हलीमुल करीम वाला। उलमा ने एक और भी लिखा है जो शेर को सदूक पढ़ा करते थे, या मन अज़हर अल जमील, ये कुनूत है जब हम किताब उसके अंदर लिखेंगे उसके अंदर भी इसका तस्कर आएगा। तीसरी एक और है कि मनाजात शाबानिया, हमारी मनाजात है जो आइमा पढ़ा करते थे, इलाही हबली कमाल अल इंकता, इसकी ये फितरे पढ़े जाए। उलमा ने लिखा है वो किसी दुआ के मुतालिक ये चीज़ साबित नहीं कि इसके 12 के 12 इमाम उसको पढ़ते हो सिवाय मनाजात शाबानिया, ये 12 के 12 इमामों से साबित है कि इसको पढ़ा करते थे। इसमें पूरी मनाजात नहीं पढ़नी कुनूत के अंदर, बस ये फितरे यहाँ से शुरू होते हैं इलाही हबली कमाल अल इंकता, कि जब हम इसमें पेश करेंगे किताब के अंदर तो बाकायदा इसको देंगे। कहा जाता है कि अच्छा देखिए जो कुनूत में जो भी आपको दुआ मांगनी हो मांग सकते हैं और दुनियावी भी तमाम हाजतें ही मांग सकते हैं, लेकिन उलमा ने एक कहा अगर जो मांग तो सकते हैं लेकिन कहा कि बेहतर है कि आप दुनियावी हाजतें कुनूत में ना मांगें। कहा जाता है कि जो आप तमाम चीज़ों से नमाज में पीछा छुड़ाकर दुनिया से पीछा छुड़ाकर परवाधिकार के हाजर में हाजिर हुए हैं ना, तो दोबारा रेशा में कीड़े की तरह तार अपने गिर्द ना बने, दुनिया का तकनूत के अंदर तस्करा ना करें दुनियावी हाजत का, अगर जे मांग सकते हैं फिर कह रहा हूँ अगर जे मांग सकते हैं, इसमें कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन बहरहाल एक उलमा ने तंबीह इरफानी की है कि बहरहाल कोशिश करें कि दुनियावी हाजत अलग से बात बात में मांग लें, कुनूत में ना मांगें, आखरत की हाजत तलब कर सकते हैं तशहुद। कहा जाता है कि अच्छा देखिए अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये जो आप अजान में भी गवाही देकर आए थे तशहुद में फिर गवाही दे रहे हैं, कहा ये वाली गवाही उस गवाही गवाही में फर्क है, उस गवाही में भी अमल शुरू नहीं हुआ था सिर्फ दावा था उस गवाही का, तशहुद में यूं एहतियात की ज्यादा जरूरत है कि आपको दावा मुतहक्किक हो गया, आपने तकरीबन नमाज इख्तिताम पज़ीरा जिस दावा आपने शुरू में किया था आप समझेंगे उसको साबित करने का मौका, तो तशहुद पढ़ते वक्त बड़ा उस वक्त अपने आपको मेंटेन करना है। अच्छा ये ज़रूर है कि इसके अंदर आप जितनी भी इसरार नमाज से मुतल्लिक किताबें हैं मैं आखिर में एक नाम बता दूंगा, हर शख्स घर में ज़रूर होना चाहिए ताकि उससे इस्तेफादा किया जा सके। अच्छा उसके बाद तशहुद में एक पहलू एक और भी है कि आप दाया पाँव बाएं पाँव के ऊपर रखते हैं, मौला कायनात से रिवायत है कि मौला फरमाते हैं ये भी एक इरफानी पहलू है इसमें भी, ये दाया पांव जो आप बाएं पांव पर रखते हैं इसके मायने ही है कि परवरदिगार तू हक को हयात और बातिल को मौत नसीब फरमा, ये इशारा है इसके अंदर, ये दुआ है गोया इस तरीके से पांव रखना। लेकिन हाँ अगर हम एहसास हो गए वाकई होंगे क्या कर रहे हैं इस वक्त ये दुआ मांग रहे हैं पांव पे पांव रखना भी तो कैफियत बदलेगी। उसके बाद तशहुद के बाद आप दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद के मुताबिक कहा जाता है कि नमाज को अगर कबूल करवाना है तो दुरूद उसके अंदर पढ़ा जाए, यानी नमाज को कबूल करवाने वाली चीज़ है दुरूद, तो क्यों ना हम इस मौके से फायदा उठाएं अपनी महफिल को कबूल करवाना है तो बाबा से बुलंद आप सलाम तशहुद के बाद। कहा जाता है कि सजदे से भी आप उठें, सजदे के माने थे कि फना फिल्ला हो जाए इरफानी पहलू के अतबार से, बस खुदा में गर्क हो गए, वो ये दूसरी जिंदगी मिली और उठकर बैठे। अब जब दूसरी जिंदगी मिली और दुनिया में आए तो सबसे पहले मौजूदात में किसको सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेका अय्युहन नबी व अफ़ज़ल मौजूदात, ये भी एक दिमाग में लेकर आए कि सब समझे मुझे दूसरी हयात मिली है, फना हो चुके थे ना परवरदिगार में, अब जो दुनिया में वापस आए हैं तो सबसे पहले जनाबे रसूल खुदा को सलाम करें। उन्होंने एक चीज लिखी कि जो सलाम है ना ये परवरदिगार का एक नाम है जो उसने हमारे नफ्सों में अमानतन रखा और हम पर वाजिब करार दिया है कि अब माशरती उम्र में इसको जाहिर करें। सलाम सलामती से निकला है, खुदा का एक राज है जो उसने हमारे नफ्सों के अंदर रखा है और हम पर वाजिब के इस राज को जाहिर करें माशरती उम्र में सबके लिए सलामती बन जाएगी। देखिए पानी के मुतालिक भी कहा जाता है कि पानी जब बरसता है ना आसमान से तो वो फिर इस चीज को नहीं देखता। रिवायतों में भी आया कि वो हर खुश जमीन पे बरसता है, पत्थरों पे बरसता है, खुश खाशाक चीजों पे बरसता है, फूलों के ऊपर बरसता है। तो इसी तरीके से मोमिन को हर एक की चीज, हर शख्स के लिए सलामती का पैगाम बन जाना चाहिए। किसी की गिबत ना करे, किसी के खिलाफ बुराई ना करे, चाहे वो गैर मोमिन ही क्यों ना सही। मोमिन का नाम है यानी उसके अंदर, उसके नफ्स में खुदा का एक राज है सलाम। और ये सलाम वो चीजें कहा जाता है कि कोई सिर्फ तीन या चार ऐसे मुस्तहबात हैं जिनका सवाब वाजिब से बढ़ गया, उनमें एक सलाम भी कहा जाता है। सलाम में 70 नेकियां हैं, सलाम कहना मुस्तहब है उसकी 69 नेकियां हैं, 69, और वाजिब है जवाब देना उसमें सिर्फ एक नेकी। सलाम उन तीन या चार अमाल में से एक है कि जिसमें खुद मुस्तहब का सवाब वाजिब से बढ़ गया। तो माशरती उम्र में इसको जाहिर करना वाजिब है। मसलन ये कि अगर आपने यानी वैसे तो कह रहे हैं अस्सलाम वालेका यो नबी अस्सलाम वालेना वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, खुदा के साले बंदों पर सलाम, और उसके बाद साले बंदों की इबादत शुरू कर दी जाए, तो सलामती का पैगाम तो ना हो, इसका मतलब वहीं से सलाम आपका झूठा था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, अगर जमात के साथ आप ये तो आप दिल में ये लेकर आए कि मैं हाजरीन जो जमात के अंदर शरीक लोग हैं और पेश इमाम को भी शामिल करें, इनके ऊपर सलाम पढ़ रहा हूँ, और पेश इमाम के लिए वो हाजरीन के लिए। और सलाम वो चीज़ है कि आपको पता है कि रिस्क बड़ा जो वसत करने वाली चीज़ें उसके अंदर से कि जिस वक्त इंसान घर के अंदर दाखिल हो तो अहले खाना को सलाम करें, और हत्ता कि अहले खाना को सलाम तो ज़रा जब अहले खाना मिलेंगे अंदर जाकर उस वक्त करेगा, घर में दरवाजे वक्त दाखिल होते वक्त अपने आप को भी सलाम करने में सवाल, अपने खुद को अपने ऊपर सलामती भेजें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू अपने लिए करें और उसके बाद फिर खानदान वालों के लिए। खैर, फिर एक और भी है कि सलाम में जो शख्स भी फकीर और गनी का फर्क करे, कयामत के दिन खुदा उस पर जरूर गज़बनाक होगा कि ये इसको मैं क्या सलाम, इसको मुझे सलाम करना चाहिए। फकीर और गनी का जहाँ आपने फर्क किया सलाम में, गज़बनाक होगा खुदा कयामत के। तस्बीहात अरबा ये भी पढ़ते हैं ना, इसकी भी एक अलग आयतुल्ला सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने लिखा है कि तस्बीह मौजूदात जो है ना, जो खुदा हर चीज़ खुदा की तस्बीह कर रही है, मसलन दरख्त भी खुदा की तस्बीह कर रहा है, कहा कि ये हकीकी तस्बीह है, मजाजी नहीं है। कहा जाता है ना कि मसलन दिमाग में हो सकता है ख्याल है कि बतौर तख्लीकी वो तस्बीह कर रही हूँ, नहीं, जबान है उनकी जिससे तस्बीह करी वो सुनी भी जा सकती है। एक मदरसे का नाम भी लिया है बाकायदा एक आलिम ने, जो खुदा की कसम में उसके मदरसे के बाहर जो दरख्त लगे हैं मैं रोजाना फजर के बाद उनकी तस्बीह की आवाज़ें सुनता हूँ। मादियत के थोड़े से जरा पर्दे हटाने पड़ेंगे तो फिर वो चीज़ नजर आएगी, सुनाई देगी। जब ही रिवायत में जुमला मिलता है कि खबरदार जानवरों के बोलने पर उनके मुंह पे तमाचा मत मारो, मसलन कोई जानवर बोल रहा है आपने उसे खामोश कराया, क्योंकि वो खुदा की तस्बीह कर रहे हैं। यहाँ तक आयतुल्ला मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने तफसीर अल मीज़ान में लिखा है कि रिवायत का जुमला है कि मैले कपड़े मत पहनो, क्योंकि मैला लिबास खुदा की तस्बीह नहीं करता, लिबास तक खुदा की तस्बीह कर रहा है। सुभान अल्लाह, तस्बीहात अरबा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहा जाता है, चार तस्बीह है ना इसमें, सुभान अल्लाह तस्बीह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तहमीद, वला इलाहा इल्लल्लाह तहलील, वल्लाहु अकबर तकबीर। तस्बीह, तहमीद, तहलील और तकबीर, ये चार तकबीर है इसके। फिर उलमा ने लिखा कि देखिए रसूल को बहुत सारे हुक्म मिले, मसलन मैं रिकॉर्ड करता हूँ, सजदे का हुक्म रसूल को दो दफ़ा मिला है करने के लिए, तवक्कुल का हुक्म 8 दफ़ा मिला, इस्तग़फ़ार का 8 दफ़ा, इबादत का 5 दफ़ा, जिक्र खुदा का 5 मरतबा कुरान में, तकबीर का 2 दफ़ा और तस्बीह का 16 दफ़ा। हज़रत यूनुस के मुतालिक़ कहा जाता है कि वाहिद वजह की जिस मछली के पेट से जब हज़रत यूनुस बाहर आए तो उसकी वजह भी कुरान ने लिखी, क्यों निकाला गया, वो बहुत ज़्यादा खुदा की तस्बीह करने वाले, तस्बीह करने की वजह से उनको बाहर निकाला गया है। अच्छा, उसके बाद बस जल्दी जल्दी बात ख़त्म करूँ, ताकीबात, ताकीबात में अफजल तरीन तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, चौंतीस मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभानअल्लाह। तरतीब बदली भी जा सकती है, पहले चाहें तो आप 33 दफ़ा कर लेंगे, अफजल और सबसे ज़्यादा यही तरतीब है जो मैंने भी बताई। उलमा ने एक शिकायत लिखी, कहा कि बिल्कुल यही तस्बीह उलमा अहले सुन्नत के यहाँ भी पाई जाती है उनकी किताबों में, लेकिन किसी जगह भी इसका नाम उन्होंने तस्बीह फातिमा तो ज़हरा नहीं करवा दी, जबकि उसका शान नज़ूल ही इसका एक हज़रत फातिमा का रसूल ने तोहफ़तन ये तस्बीह दी थी। और मौला की हदीस है कि अगर इससे बेहतर दुनिया माफिया के अंदर कोई चीज़ होती तो रसूल खुदा वो फातिमा को देते, कि सबसे बेहतर चीज़ ये थी। अच्छा, इसके अंदर एक लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह, आमतौर पर अल्लाह अकबर कहते हैं, सुभान अल्लाह भी बहुत कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर भी उलमा ने लिखा है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम एक दफा इमाम का जानवर खो गया, बाहर निकली तो दिखा जानवर ही नहीं। कहा कि अगर वो जानवर मुझे मिल गया तो मैं खुदा की बेहतरीन तस्बीह हम करूंगा। अच्छा, जानवर मिल गया तो इमाम ने सिर्फ एक जुमला कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अफजल तरीन खुदा की हम्द है। तो जनाबे रसूल खुदा की हदीस है कि निस्फ मीजान अल्हम्दुलिल्लाह, निस्फ मीजान यानी जो मीजान होगी ना कयामत, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह लाके रख दिया, आधा पलड़ा तो उसी से झुक जाए, इतने यानी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इतनी ज्यादा इसकी अहमियत है। और रसूल की एक और हदीस है, अगर दुनिया माफिया किसी मोमिन को दे दी जाए और उसके जवाब में सिर्फ वो अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो जो उसको दिया गया उससे कहीं ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ जाए, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर तस्बीहात अरबा भी हम पढ़ रहे हैं तो दिमाग में रहे कि अल्लाह अकबर क्या चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी असमत वाली चीज़ है, सुभान अल्लाह क्या चीज़ है, तो लफ्ज़ कुछ और रहेगा। अच्छा, फिर उलमा ने एक चीज़ और लिखी है कि कुरान की आयत है ना, अज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, खुदा का कसीर जिक्र करो, तस्बीह फातिमतु ज़हरा पढ़ने वाला इसमें शरीक हो जाता है, उसको लिखा जाएगा कि इसने खुदा का जिक्र कसीर किया है आपके नाम आया। अगर आप तस्बीह फातिमा रोज पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, फिर उसके बाद दुआ आप मांगते हैं, कहा कि दुआ इससे कतई नजर के कबूल हो या कबूल ना हो, पहला तीन तीन फायदे आपको जरूर दुआ के मिलते हैं। पहला फायदा वाला मैंने लिखा कि या तो वो हाजत ही पूरी हो जाती है, या आखरत में उसका सवाब जखीरा कर दिया जाता है, या दुनिया में कोई ऐसी बला आपसे दूर कर दी जाती है कि अगर आप वो दुआ ना करते तो आप हलाक हो जाते, ऐसी मुसीबतें आपसे दूर होती। तो हमेशा दुआ तो करते रहें, पता नजर इससे कि चाहे कबूल हो या ना। अच्छा, उसके बाद नमाज शब की बहुत ज्यादा ताकीद आई है, पिछली बार जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उसके अंदर थोड़ा सा नमाज शब का तस्करा आया था। आज फकत एक चीज, एक पहचान है कि अगर आप नमाज शब नहीं पढ़ पा रहे तो क्यों हमें तौफीक नहीं मिल रही, एक वजह बयान की गई है बहुत स्ट्रॉन्ग। सबसे ज्यादा मासूम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स झूठ बोलता है वो नमाज शब से महरूम कर दिया जाता है। बस जिंदगी में तलाश करेंगे झूठ, तो अगर नहीं पढ़ पा रहे और कोशिश और तमन्ना के बावजूद भी नमाज शब नहीं मिल पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे हैं उठकर फजर से पहले, एक तो वो है कि जो आप थोड़े हल्के तरीके बता दिए गए कि नमाज ईशा के बाद एक रकत भी अगर पढ़ ली जाए ये उसमें शामिल नहीं हो, बहरहाल उसका सवाब बहुत ज्यादा कम है। बेहतरीन तो वो है कि जो आप नमाज फजर से पहले उठकर पढ़ते हैं। मोमिन झूठ बोलता है नमाज शब की तौफीक से महरूम कर दिया जाए, बस ये जिंदगी में तलाश करना है। अच्छा, फिर उसके बाद नमाज जमात, बस इसका एक एक लाइन का सिर्फ, नमाज जमात के अंदर ही कहा जाता है कि निफाक से बचाने वाली अगर कोई चीज़ है तो नमाज जमात। खुद ज़ीनतुकुम इंदा कुल्ले मस्जिद, जो कुरान की आयत है ना कि मस्जिद जाने से पहले जीनत करो, तो जीनत से मुराद बहुत सी रिवायात के अंदर बेहतरीन पेश इमाम, जीनत से मुराद पेश इमाम यानी बेहतरीन आदमी को तुम पेश इमाम बनाओ। और रसूल खुदा की हदीस है कि किसी आलिम में बामल को पेश इमाम नमाज में बनाना है का सवाब इतना है कि जैसे उस मुक्तदियों ने मेरे पीछे या हज़रत इब्राहिम के पीछे नमाज जमात पढ़ी, वो सवाब मिलेगा अगर किसी बेहतरीन आदिल पेश इमाम को अगर वो मनसब दिया जाए। और बस एक आखिरी चीज़, खुशू खुजू, ये जो मैंने कहा ना कि ये चीज़ पैदा नहीं हो सकती, नहीं हो पा रही, ख्यालात की जोजत जोलानी आपको लिए फिर रही है इधर से उधर और परवरदिगार की तरफ इर्तकाज नहीं हो पा रहा। कुरान की आयत है, कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, बेशक फला पाई उन साहिबान ईमान ने जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं, हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसून अल-फिरदौस, यही लोग वारिस और मालिक बनेंगे जन्नत के। कुरान की आयत, यही लोग वारिस और मालिक बनेंगे। अच्छा, अब इसमें बातें तो बहुत ज़्यादा हैं कि खुशी व खुजू की तारीफ़ क्या है, बहरहाल एक खुशी व खुजू की तारीफ़ भी जल्दी सुन लीजिए। ऐसा इरतकाज़ और कंसंट्रेशन जिसमें खौफ और मोहब्बत दोनों शामिल हैं, उसको कहा जाएगा कि आपने खुशू किया। अच्छा, बहुत सी तबीयतों के अंदर खुदा से खौफ ज़्यादा होता है, बहुत सी तबीयतों में मोहब्बत ज़्यादा होती है। कहा जाता है हज़रत इब्राहिम पर मोहब्बत का गलबा था, हज़रत याहिया नबी आले नबिया ना में खौफ का गलबा ज़्यादा था। लेकिन उलमा ने यह भी लिखा है, कोई मोहब्बत ऐसी नहीं जो खौफ से ममजूज ना हो, और कोई खौफ ऐसा नहीं जिसमें मोहब्बत ना पाई जाती हो, बहरहाल दोनों इंटरमिक्स थी। रसूल की हदीस है, कोई शख्स अगर सिर्फ दो रकत नमाज ऐसी पढ़ ले कि जिसमें मुकम्मल खुशू खुजू रखे और दुनिया की किसी चीज़ की तरफ पूरी नमाज में मुतवज्जे ना हो, उसके सारे जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इतनी अहम तरीन खुशू खुजू चीज़, अच्छा फिर उलमा ने लिखा कि देखिए खुशु खुजू आसानी से हाथ आने वाली चीज़ नहीं, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, सुस्ती और काहली से इसमें कोई काम नहीं हो सकता। फिर फरमाते हैं कि शुरू में ये काम मुश्किल है खुशु खुजू हासिल करना, लेकिन थोड़ी सी अगर मेहनत की जाए तो काम आसान हो जाता, बस शुरू करने की देर कोशिश तो करके देखिए। फिर उलमा ने कुछ तरीके बताए हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, एक सबसे पहले खतरा, इमाम खुमैनी ने खतरा लिखा, खतरा बहुत ही अजीम, कहा कि अगर आपने नमाज में खुशु व खुजू ना किया, ना पैदा कर पाए, तो बहुत बड़ा खतरा ये है कि इसके बानी होंगे कि आप अपने आमाल के अंदर नूरानियत नहीं पैदा कर सकेंगे, और इसका खतरा ये होगा कि जिस वक्त मुनकिर और नकीर आकर आपसे पूछेंगे तो उनकी दहशत से आप सब कुछ भूल जाएंगे। ये नमाज में खुशु व खुजू है जो आमाल में नूरानियत पैदा करता है, ये अगर आपने नहीं पैदा कर पाया किसी ने, तो बहुत बड़ा खतरे से मैं कह रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि मैं इंतबाह कर रहा हूँ आप लोगों को, तंबीह कर रहा हूँ, बहुत बड़े खतरे की निशानदेही कर रहा हूँ कि अगर आपने ये नहीं किया कर पाए पैदा खुशु खुजू, तो जिस वक्त सवाल मुनकिर और नकीर होगा सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। यहाँ तक रिवायत में अंदर आया कि जहाँ पर रसूल खुदा का नाम भूल जाएंगे, तो ये ज़रूर पैदा करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर कुछ तरीके, उलमा ने कहा पहला तरीका खुशु व खुजू पैदा करने का ये कोशिश ही करें कि अगर जमात से नमाज नहीं पढ़ रहे बिलफर्ज और फुरादा पढ़ रहे हैं तो तन्हाई में नमाज पढ़ने की आदत डालें, थोड़ी सी तन्हाई। बाज़ात होता है ना कि मसलन कोई हवादार है वहाँ आ गए और लोग भी बैठे हैं, टीवी भी चल रहा है, बच्चे भी उछल कूद कर रहे हैं, तवज्जो नहीं हो पाती आप। अगर खुशु व खुजू पैदा करना तन्हाई में जाए, तन्हाई में जाइए। दूसरी चीज़ ये कि कोशिश करें कि वो जगह नस्बतन तारीख, क्योंकि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन वहाँ पे हुई होती है, रोशनी वगैरह होती है, तो आपकी तवज्जो इधर उधर हो जाती है। कोशिश करेंगे बिल्कुल तारीकी में तो पढ़ना कराइए था नमाज के, बिल्कुल बिल्कुल ही डार्क हुआ अंधेरा ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा से कुछ ना कुछ रोशनी हो, अलबत्ता तारीकी हो। और जो बिल्कुल अपने ख्याल के हजूम और अलगार को ना रोक पाए, तो उलमा ने लिखा है कि ठीक है वैसे तो नमाज में आँखें बंद करने में कराइए, लेकिन जो मजबूर हो गया और ख्याल के अलगार को बिल्कुल ना रोक पा रहा वो आँखें बंद करके नमाज पढ़े, उसमें उसको सहूलत मिल जाएगी। आगे उलमा ने लिखा कि इबादात में मौला की हदीस है, मौला कायनात कि अपने नफ्स पर सख्ती करके उसे इबादात का दुश्मन मत बनाओ। अगर आप कभी देख रहे हैं कि मसलन कोई इस वक्त कोई और भी ऐसा अहम काम आपके सामने आ गया और आपने कहा नहीं बस मैं तो इस वक्त अव्वल ही वक्त में नमाज पढ़ूंगा, अब नफ्स के अंदर आपके ना एक जंग सी चलेगी, वो काम भी आपके सामने है, बल्कि जो 14 मकामात तकरीन बताए गए कि जहाँ नमाज को देर से पढ़ना मुस्ताब है अव्वल में पढ़ना मुस्ताब नहीं, उसमें एक ये कोई और ऐसा काम हो कि जिस वक्त हुजूर कल्ब आपको ज़्यादा मिल रही हो, अव्वल वक्त में हुजूर कल्ब नहीं मिल पा रहा है, बाद के किसी वक्त में 2-3-4 घंटे बाद हुजूर कल्ब ज़्यादा है, मसलन गर्मी कम हो जाएगी, मसलन लाइट इस वक्त गएगी और अव्वल वक्त है, और शदीद गर्मी के अंदर आपको नमाज पढ़ने में लुत्फ नहीं महसूस होगा, हुजूर कल्ब नहीं आ पाएगा, आप मुस्ताब है कि देर कर दें नमाज, ठीक है ना। बहरहाल उलमा ने ये लिखा है कि ज़बरदस्ती ना करें इसके साथ, वरना ये इबादत का दुश्मन बन जाएगा, इसमें सख्ती ना ज़्यादा करें। फिर लिखा उलमा ने कि तफहीम कल्ब, दिल को समझाएं भी तो, इसको थोड़ा सा एहसास भी दिलाएं कि मवाइज़ और किताबें आप ऐसी पढ़ें जिससे दिल को समझ आए कि नमाज है कितनी अजीम चीज़, जब उसकी अजमत का एहसास होगा तो खुद ब खुद खुशी व खुजू पैदा होगा। आयतुल्लाह शाह आबादी का जुमला नकल किया इमाम खुमैनी ने कि वो कहते थे कि जिस तरह एक बच्चे को सिखाया जाता है ना, इस तरह अपने नफ्स को आदत डालो। बच्चे को सिखाने में कितनी मुश्किल शुरू में पेश आती है, कहा जाता है कि पहले जो है ना, जो आपका कहा जाता है 100 दफ़ा अगर आपने इस जिक्र को पढ़ें, 1000 दफ़ा पढ़ें, 3-3 दफ़ा पढ़ें, इसमें सबसे पहले आपको जबान पर उस जिक्र की कसरत करके आदि बनाया जाता है और दिल को उसका ताबे किया जाता है, और जब दिल पूरा मुकम्मल तौर पे ताबे हो जाता है तो दिल एकदम से इमाम बन जाता है और जबान उसकी ताबे हो जाती है। बड़ा मुश्किल, पता नहीं समझ आई है नहीं आए आ पाई बात, लेकिन बहरहाल जो कसरत है ना इसके अंदर कि मसलन 1000 दफ़ा इस चीज़ को पढ़ें, 100 दफ़ा इस चीज़ को पढ़ें, तो जबान को मुसलसल आदि बनाना है इसका। जब भी अगर एक दफ़ा भी अगर आदि हो गई इन चीज़ों की, तो खुद ब खुद फिर कल्ब इमाम बन जाएगा आपका और जबान उसके ताबे हो जाएगी, लेकिन शुरू में बच्चे की तरह सिखाना। फिर फरमाते हैं कि सबसे पहले तो कोशिश करें ये करें कि सिर्फ अल्फाज पर तवज्जो करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ अल्फाज माने माने कुछ नहीं, ये बात के मरण लें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सिर्फ अल्फाज अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, सिर्फ अल्फाज पर। जब आप कई दफ़ा की बार बार की प्रैक्टिस के बाद अल्फाज पर कंसंट्रेशन आ जाए, तो आप दूसरे मरहले में मानी कंसंट्रेशन पर आप लेकर जाए, اور رحمان رحیم خدا کی رحیمیت کو لے کر آئیں, مالک یوم الدین روزہ قیامت کو یاد کریں, اس طرح سے کرتے ہوئے جائیں. تو بہرحال یہ کچھ طریقے ہیں. علماء نے لکھا کہ نماز میں خشوع خضوع کم کرنے کا ایک بہت بڑی وجہ حب دنیا. حب دنیا کو اگر کسی طریقے سے دنیا کی محبت کو کم کرنے کے جو طریقے ہیں, جس پہ کتابچہ ہمارا آنے بھی والا ہے, وہ اگر آپ ان طریقے کار پہ علماء نے جو لکھے ہیں ان پہ عمل کریں تو حب دنیا کم, حب دنیا اگر کم ہوگی تو خشوع خضوع پیدا ہوگی. یہ سب سے بڑا معنی ہے خشوع خضوع. اور ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں, وہی میں نے کہا کہ جتنی بڑی بڑا جہاز ہوگا اتنے اس میں اسموتھ ہوگا وہ. اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ نماز جماعت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے اور فلسفہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون اس کے اندر بندہ کامل ایسی نماز پڑھ رہا ہو, اور خدا کی کریمیت اس بات سے, ذات اس بات سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ کچھ کی نماز کو قبول کر لے, کچھ کو رد کر دے, پوری کی پوری کو قبول کرتی ہے. جس میں ہاتھ آ کے تو نماز جماعت سے پڑھنے کا فائدہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی کی اس میں بھی اگر قبول ہو رہی ہے نماز, تو پوری جماعت کی اس کے نتیجے میں قبول ہو جائے گی. اور پھر جو ان سب طریقۂ کار پہ بھی نہ عمل کر پائے, ظاہر قلوب مختلف ہیں اور شریعت اسلام نے اس کا خیال رکھا ہے کہ خوشی و خضوع بالکل بھی اگر کوئی شخص تمام خوشی کے باوجود بھی نہیں پیدا کر پا رہا, تو اماموں نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ جو تمہارے نمازوں کی کمی ہے اور نقصان ہے وہ نوافل سے پورا کر لیا کرو. اگر کوئی شخص اس کے بعد کی مستحب نمازیں پڑھ لے تو ساری کمی جو ہے وہ اس کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے اور اس کا فائدہ مکمل کا مکمل اس کو مل جاتا ہے اگر وہ نوافل پڑھ کر. ہاں بس ایک آخری چیز اس میں, اور آج آخری جو ہے وہ میرے خیال ہے زاکرین کی طرح سے ہو گیا, ایسا ہوتا نہیں تھا, وہ یہ ہے کہ اگر مسکن دوائیں اثر نہ کریں تو پھر مسحل دوائیں استعمال کرنی ہوتی ہیں. اچھا مسحل کیا چیز ہے؟ یہ علماء نے لکھا ہے انہوں نے وہی کوٹ کر دیا, اگر جیسے اس کو اگر اپنے میڈیکل سائنس میں کہتا تو کچھ اور الفاظ ہوتے. مسحل کے معنی ہیں, انہوں نے کہا کہ چند مثالیں دیتے. ایک صحابی رسول ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ میں اور چڑیوں کی چہچہاٹ نے انہیں متوجہ کر لیا. نماز کے بعد انہوں نے پورا درخت پورا باغ ہی رائے خدا میں دے صدقہ کر دیا, پیچھا ہی چھڑا لیا اس چیز سے. ایک عالم نماز فجر کو جماعت سے نہ پڑھ سکے تو پوری رات انہوں نے مستحب نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دی اور نفس کو سزا دی کہ ایسا کیوں ہوا. کہا کہ ایک طریقہ مسحل ہی ہے, خوشی خضوع نہیں پیدا ہو تو نفس کو تھوڑی سزا دو, خوشی خضوع نہیں پیدا ہو تو خوب نمازیں پڑھ. اچھا ایک عالم کے متعلق انہوں نے نماز مغرب اتنی تاخیر سے پڑھی کہ وقت فضیلت چلا گیا, انہوں نے دو غلام آزاد کر. مسئلہ ہے کہ اگر مسکن دوائیں سر نہ کریں تو مسل دوائیں لے کر آنی پڑیں گی, تو بہرحال اس کے اندر ہی بات کی. اور آخرت سے آخری سے ایک پہلے والی بات, اگر کسی شخص کا پچھلا ریکارڈ خراب ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ریکارڈ کی وجہ سے بھی اکثر وہ نوکری سے محروم کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے نمازوں کا بھی معاملہ ہے, کچھ پچھلا ریکارڈ اگر خراب ہے توبہ کیے بغیر چلے آ رہے ہیں قبول نہیں ہو پاتی نماز. علماء نے لکھا ہے کہ شرائط قبولیت نماز پانچ چھ. سب سے پہلی تو چیز ہے شرط اعتقادی, آپ کا اعتقاد صحیح ہونا چاہیے. چلو یہ تو سب مان لیا کہ سب کا اعتقاد صحیح, پہلی شرط پوری ہو رہی ہے قبولیت. دوسری شرط ہے شرط سیاسی, اگر چاہیے شرط سیاسی جو ہے وہ شرط اعتقادی کے اندر ہی آتی ہے, مولا کی ولایت کا اقرار شرط سیاسی قرار دیتے ہیں. سیاست سے مرادی دنیاوی سیاست نہیں, جو بھی جھوٹ مبنی ہوتی ہے الہی سیاست جو کہ خود عقائد کے اندر سے. پھر ہے شرط اخلاقی, انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا فقط متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. نماز کو قبول کروانا تقوی اختیار کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد ہے شرط اقتصادی, اسلامی مال روایتوں میں کتنا ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسروں کے مالی حقوق پورے نہیں کر رہا ہے تو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. اقتصادی شرط بھی نماز کے اندر اس کی قبولیت نہیں. پھر ہے ایک شرط اجتماعی, برادر دینی سے اگر کوئی اپنے روابط کو منقطع کر لے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. ماں باپ کو اگر غضب کی نگاہ سے دیکھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. مومن کی غیبت کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. مومن سے سوئے زنی رکھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. پورے ایک لسٹ ہے جو نمازوں کو قبول ہونے سے روکتی ہیں. جی تو یہ خاندان سے نیک برتاؤ, بیوی جو ہے شوہر سے بد کلامی کرے نماز قبول نہیں ہوتی, شوہر بیوی کو تکلیف پہنچائے نماز قبول نہیں ہوتی. دیکھیے کتنی شرطیں, اعتقادی شرط ہے, سیاسی شرط ہے, اخلاقی شرط ہے, اجتماعی شرط ہے, اقتصادی شرط ہے. یعنی اب یہ میں نے بالکل مختصراً کر دیا, ورنہ اس کو پھر پھیلائیں گے تو اور بہت ساری چیزیں بنیں گی. اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو آخری بات کے ساتھ یوں ختم ہوتی ہے کہ اب تک کی جو نمازیں ہم نے پڑھی وہ تو جیسی تیسی گزر گئی, चलें अब से हम अच्छी नमाज पढ़ना शुरू करेंगे तो अफसोस ये होता है कि अब तक की जो नमाजें इनका क्या बनेगा, अफसोस होता है ना कि अब तक तो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, उन नमाजों का क्या होगा। कुरान की आयत है, अगर कोई शख्स तौबा कर लेता है उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआति हसनात, उसकी तमाम बुराइयां नेकियों में बदल जाती हैं। तो जब बुराइयां नेकियों में बदल जाती हैं तो जो इबादतें आप अंजाम देते रहे नाकिस थी ना, वो ठीक थी तो ठीक, खुदा उनको भी उतना ही कमाल तक पहुंचाकर आपकी सिदरे मुंतहा के ऊपर जो रजिस्टर है नमाज के कबूल है तो उसमें दर्ज करते हैं। तो इसमें पिछली नमाजों से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, उनका क्या होगा वो भी उसी मुकाम मर्तबे की बना दी जाएंगी जिस पर आप अब अपनी नमाज को लेकर जाएंगे। तो उसके साथ ही हमारी आज की गुफ्तगू खत्म हुई।
किताबों
के नाम एक तो उस्ताद मोहसिन करादी की तजलियात नमाज
अभी आई,
बिल्कुल नहीं आई है। आदाब नमाज इमाम खुमैनी की तर्जुमा हो गई है और वो भी आ चुकी है मार्केट में। इसके अलावा इसरारुस्सलात शहीद सानी की, उसका भी उर्दू तर्जुमा हो गया और वो भी मौजूद है इस वक्त बुक स्टॉल्स पर। आयतुल्ला खामनेई की नमाज की गहराइयाँ वो भी है। और फिलहाल तो खाशेन की नमाज तो खैर बहुत ही मशहूर है और हर घर के अंदर तकरीबन मौजूद थी। लेकिन ये जो और हैं इसके अंदर कुछ ऐसे कि बार बार इनको आपको हर एक एक दो दो महीने बाद नमाजें ताकि बिल्कुल सही रहे, वरना नमाजों का कोई फ़ायदा हासिल ना हो सका। और इमाम को मैंने जो एहसास दिलाया है उस खतरे का, उससे नबरा खुदा ना करे कि हमें होना पड़ जाए। बहरहाल परवरदिगार से दुआ है कि नमाज को जैसा वो चाहता है कि हम पढ़ें हमें वैसा नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इमाम ज़माने के उसूल बता दिया।